Welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas Fort Worth and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Sun rahe ji aap Radio Azad aur main hu Azad. Program hai Bol ke Lab Azad hain tere aur ummeed karte hain ki behtar taur par celebrate kar payenge ji is show mein jiska taluq hamari aur aapki tamam logon ki zindagiyon se bahut zyada hai aur wo hai stress. ایک زمانہ تھا لوگوں سے پوچھیں یہ سٹریس وہ پوچھا کرتے تھے گاؤں میں لوگ کہ یہ سٹریس کیوں ہوندا ہے یار آج میرا نہیں خیال گاؤں میں بھی ایسا کوئی آدمی ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ سٹریس کیا ہوتا ہے کیونکہ گاؤں میں بھی جب ایلوپیشیا کی بیماری ہوتی ہے جس سے وہ چہرے کے بال نہیں جھڑ جاتے داڑھی کے یا سر کے بال تو ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اسے کہتے ہیں وہ ڈاکٹر آگے سے کہتے ہیں جس کا کوئی ریزن آج تک پتہ نہیں چل پایا صرف یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سٹریس سے ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ اور بہت ساری چیزیں ہیں جب ڈاکٹرز کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جس کا تعلق آنکھوں پہ جو نشان سے بن جاتے ہیں آنکھوں کے ارد گرد کچھ ہو جاتا ہے سکن کے اور بہت سارے پرابلمز ہیں بہت سارے مسائل ہیں جب وہ آتے ہیں تو اس کا تعلق سٹریس سے نکلتا ہے سو یہ سٹریس جو ہے اس کا مطلب ہے ہمارا جو دماغ ہے اور پھر دماغ کا تو چلیں ایک کام ہے ایک سسٹم ہے اس کا لیکن مائنڈ ہم لوگ خود بناتے ہیں یہ ایک عجیب بات ہے کیونکہ دماغ جو رب نے دیا ہے اس کے اندر تو کیمیکلز اور بہت ساری جو پوری قدرت کا شاہکار ہے لیکن اس کے بعد زندگی میں مائنڈ جو ہم بناتے ہیں نا وہ ہمارا پیدا کردہ ہوتا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا جو اثر ہوتا ہے وہ ہمارے براٹ اپ ہمارا جو فیملی اپ برنگنگ جو ہے ہماری اس کا ہوتا ہے اس کے بعد انوائرمنٹ کا ہوتا ہے گھر کے ماحول کا ہوتا ہے سوسائٹی کا ہوتا ہے اس ریلیجن کا جس میں ہم پیدا ہوتے ہیں جس جو اثر ہوتا ہے جو باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں یہ تب اس کے بعد جو ہماری سکولنگ ہوتی ہے پھر ہمارا کالج اور یہ ساری چیزیں مل کے جو ہیں وہ ہمارا مائنڈ بناتے ہیں اور ان سب کے بعد ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو انسان کرتا ہے جب اس کی عمر 13, 14, 15, 18, 20, 24 سال کی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ دنیا کو جیسے بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھا کرتا تھا جیسے بچپن میں اس کو کہا گیا تھا ویسی چیزیں جب نہیں ہوتی وہ پریکٹیکل ہوتا ہے جب آدمی اپنی زندگی میں تو اس کا مائنڈ سیٹ کہتے ہیں نا فلاں کا مائنڈ سیٹ آپ نہیں سمجھ سکتے تو مائنڈ جو ہے اس میں جو چینجز آدمی لے کے آتا ہے جو کنڈیشننگ ہو چکی ہے اس کو جو بدلنے کی کوشش کرتا ہے آپ غلط اور صحیح کا فرق اور بلیک اینڈ وائٹ کے بیچ میں ایک بہت بڑا ایریا ہے جو کہ گرے ایریا ہے اس کو جب چیزوں کو فگر آؤٹ کرنا شروع کرتا ہے تو اس سے اس کی سوچ بنتی ہے اور انسان کا جو مائنڈ ہے نا وہ بیسکلی مینیفیسٹ آپ کی جو سوچ ہے وہ مینیفیسٹ کرتی ہے آپ کے مائنڈ سیٹ کے اوپر اور پھر وہی چیزیں آپ کی زندگی میں آنا شروع ہوتی ہیں زندگی میں بہت سارے علوم ہیں بہت سارے سبجیکٹس ہیں ڈسپلنز ہیں پڑھائی کے اور ان میں سے ڈفرینٹ جو مختلف جو نالج کی برانچز ہیں اگر آپ ان پہ ان کے پاس جائیں تو وہ آپ کو کچھ عجیب سی بیسک چیزیں بتاتے ہیں جو عجیب ہم کو لگتی ہیں مثلا یہ جو کہتے ہیں صبح سویرے اٹھ کے آپ جیسے اپنا صبح شروع کرتے ہو ویسے ہی آپ کا پورا دن گزرے گا اب صبح کو شروع کرانے کے لیے آپ اگر غور کریں ریلیٹ کریں نا اس علم سے جو بھی علم یہ کہتا ہے تو آپ جس مذہب میں پیدا ہوئے ہیں اس کی پریئر سے شروع کریں اگر آپ یا جو بھی آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے کوئی ایسی ایک چیز کوئی ایسی ووکیشن کوئی ایک ایسی ٹریننگ کوئی ایسا ایک کام جس کو آپ کا دل لگتا ہے جس میں آپ صبح اٹھتے ہیں فریش ہو کے اٹھتے ہیں کہ آج میں وہ کام کرنے جاؤں گا بجائے اس کے کہ وہ کام جو آپ کو لگے کہ آپ پہ لاد دیا گیا ہے یا آپ نے خود اپنے آپ پہ لاد لیا ہے کیونکہ سب کرتے تھے ٹھیک ہے دل آپ کا انجینئرنگ میں نہیں ہے آپ آرٹسٹ ہیں اب آپ نے انجینئرنگ کر لی ہے وہ خرچہ بھی چلانا ہے آپ نے تو اب اس چکر میں جب آپ کے دل سے وہ آ نہیں رہا تو ایک فٹیگ سی پرماننٹ آپ کو فیل ہو رہی ہے सो इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना, ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे स्ट्रेस में इजाफा करती हैं। वो चीज़ें जो हमने सोची थी वो हुई नहीं उसके, और हमने उसको बदलने की कोशिश थोड़ी सी की, उसके बाद हमने अपने हथियार जल्दी डाल दिए। उससे हमको स्ट्रेस होता है क्योंकि कुछ चीज़ें हम बदलना चाहते थे वो बदल नहीं पाए हम। क्यों नहीं बदल पाए? हाफ हार्टेड एफर्ट थी, या कोशिश थी, ज़बानी काम था सिर्फ, या कोई उसके ऊपर अमल, कोई एक्शन भी किया था हमने। वो सारी चीज़ें भी हमें, हमारे स्ट्रेस का जो लेवल है वो बढ़ाती चली जाती हैं। अच्छा, अब इंसान का जो दिमाग है ना, वो कंप्यूटर की तरह होता है। मसलन कंप्यूटर में सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको अगर अपना ईमेल खोलना है तो आपको कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपने सिंपल इंटरनेट एक्सप्लोरर या क्रोम उसके अंदर जाना है, www.hotmail.com डालना है, और उसके बाद आपने यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, अपने ईमेल में चले जाना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कंप्यूटर के अंदर सिर्फ यही एक फंक्शन है, या कंप्यूटर का जो नॉमनक्लेचर है या उसकी कॉन्फ़िगरेशन है या उसका सेटअप है, उसके अंदर बाकी आप उसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर कभी कभी ओवरलोड भी हो जाता है, उसको खाली करना पड़ता है। जो चीज़ें आप उसमें खोलते हैं ना, मसलन अगर आप उसमें कुकीज़ बन जाती हैं, जैसे आप अपने फ़ोटोज़ उसके अंदर खोलते हैं, अटैचमेंट्स खोलते हैं, और वो बहुत ज़्यादा बैकअप भी हो जाता है। तो इस तरह जैसे आपको फ़ोन होता है, आप तो आईफोन भी और ये एंड्रॉयड भी कंप्यूटर्स हैं, तो वो बैकअप में आपको उसको क्लियर करना होता है, वरना वो चलते रहते हैं और आप जो है वो आपकी जो बैटरी है वो कम होती चली जाती है। इंसान भी ऐसा ही है, उसकी भी बैटरी, आप जब माइंड में बहुत सारी चीज़ें खोलते रहते हैं, उनको रीविजिट करते रहते हैं और उनको, उनकी जान नहीं छोड़ते आप, उनको हम क्लीन नहीं करते, सफाई नहीं करते उसकी, तो फिर वो ओवरलोड हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, जो आजकल का ज़माना है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारा घर है। मैं पहले भी ये मिसाल दे चुका हूँ, जब तक हम एक घर को दूसरे घर हम शिफ्ट नहीं करते, तब तक हमें लगता है जो सामान हमारे पास है वो हम सब यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हम इतनी चीज़ें फेंकते हैं जब हम एक घर से दूसरे घर में जाते हैं जो हमें ज़रूरत ही नहीं होती, और वैसे ही हम एक्सेस बैगेज लेके फिर रहे होते हैं। इंसान का दिमाग भी ऐसा ही है, और ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी नहीं हैं, ये सारी चीज़ें मैंने अपने पे अप्लाई की हैं। अप्लाई करने के बाद मैंने, मुझे ये समझ आया कि अब मैं ज़्यादा हल्का फुल्का फील करता हूँ। नए ज़माने में डिटॉक्स करना एक नई फिलॉसफी है जो आप यूज़ करते हैं, गोलियाँ हर्बल सप्लीमेंट्स होते हैं जो आप यूज़ करते हैं, और आप अपने आप को डिटॉक्सिफाई करते हैं। आपका सिस्टम स्लगिश हो जाता है, इतने अरसे से आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, जो भी हम चीज़ों के साथ खाते रहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केओस होता है, हम कंप्यूटर्स के आगे और यू नो सेलफोन के पास और इन चीज़ों के पास बैठे रहते हैं, जो परमानेंट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इस किस्म की बहुत सारी और रेडिएशंस हैं, ये चीज़ें प्रोड्यूस करते रहते हैं, उसके भी हमारे ऊपर असरात होते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हम खाते हैं, जो चीज़ें हम, और उसके बाद अगर प्रॉपर एलिमिनेशन ना हो, इवैक्यूएट प्रॉपरली ना हो चीज़ों का, इंसान को सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया है और गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो जाते हैं, बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सो उसके लिए वो कहते हैं जी आपका सिस्टम जो है वो ओवरलोड हुआ हुआ है, इसको क्लीन करें आप। उसके लिए वो आपको डिटॉक्स देते हैं और आप वो लेते हैं और आपका मैदा जो है वो खाली हो, साफ हो जाता है। मैदा जिसे कहते हैं हम लोग गांव में, मैदा कहते हैं हिंदू में, तो वो साफ हो जाता है और आपको थोड़ा सा आपकी एक्टिविटी, आपकी नॉर्मल होना शुरू होती है। लेकिन इंसानी जहन को हम लोग डिटॉक्स नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें इख्तियार लोगों का नहीं है, आपका अपना है। आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं अपने जहन को मजबूत करने के लिए, जिस्म को मजबूत करने का भी हमारा इतना ध्यान नहीं है, लेकिन लोग फिर भी एक्सरसाइज, जिम और ये सब करके जिस्म को थोड़ा बहुत रख ही लेते हैं, क्योंकि हम जिंदा जिस्म के लिए हैं, स्पिरिट के लिए नहीं है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और जब तक घोड़ा और उसका सवार, घोड़ा भी अच्छी शेप में होना चाहिए, सवार जो है उसका, जो राइडर है वो भी, उसको भी अपना काम आना चाहिए, तो फिर रेस जीती जाएगी, या जितनी भी ये रेस खेलनी है जिंदगी की, जीत कौन पाया है, हार जीत जो है वो एक अजीब सी रिलेटिव सी चीज़ है। लेकिन और ये सब ना होने की वजह से हम लोगों को एक परमानेंट स्ट्रेस का शिकार है हम लोग, और जिसके बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं है ख़ास। अच्छा, ये सारी बातें मैं क्यों करता हूँ, या इस पे मैं शो, इससे पहले भी मैं हर एक दो तीन साल के बाद ज़रूर एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का शो करता हूँ, उसमें कुछ चीज़ें मैं कहता हूँ और मैं भूल जाता हूँ, लेकिन ये शो करने से मुझे एक पब्लिक प्लेज सी हो जाती है और मुझे ये चीज़ें याद रहती हैं, और जब भी मेरे पे ये टाइम आता है तो मैं इन चीज़ों को अप्लाई करने में मुझे फ़ायदा होता है इसका, इसलिए मैं ये शो करता हूँ। और लिसनर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इन डैलस एंड यू नो इन स्टे इन डिफरेंट स्टेट्स एंड इन डिफरेंट कंट्रीज, हम में से बहुत सारे लोग एक जॉम्बी सी कैफियत का शिकार हैं हम लोग। कभी कभी मुझ पर भी तारी हो जाती है, मुझे पता नहीं हो रहा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चीज़ें रख के भूल जाता हूँ, ध्यान मेरा कहीं और होता है, बाद में कुछ और कर रहा होता हूँ, मेरे जहन से चीज़ें स्किप करना शुरू हो जाती हैं, और बहुत सारी मैं चीज़ें देखता हूँ जो मैं रूटीन में किए चला जा रहा हूँ, उसका कोई रीज़न नहीं है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये सारी चीज़ें रजिस्टर हो रही होती हैं। मसलन अभी दिमाग को पता है और आपके माइंड में ये बात रजिस्टर है कि आपकी एज बढ़ती चली जा रही है। अगर आपके ख्यालात अब भी बच्चों की तरह हैं और उसका रिजल्ट और आउटकम अब भी वही आ रहा है, उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, उसमें मेच्योरिटी नहीं है, तो आप में और आपके सिस्टम में क्लैश होना शुरू हो जाता है। जैसे लोग आपको या सोसाइटी जो बनाना चाहती है और जो आप असल में हैं, उसके बीच में जी एंगल जब बढ़ता है तो हमारा स्ट्रेस ज्यादा होने शुरू हो जाता है। ठीक है, ये बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं, अगर आप इन पे गौर करें ना, तो लोग जो हमको बनाना चाहते हैं, हम वो असल में नहीं हैं, या जो हम हैं वो हम कह ही नहीं पाते, इसीलिए तो लोगों से आप उनकी बात सुनना शुरू करें तो वो बोलते चले जाते हैं और वो रोने शुरू हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप से भी कभी इतनी लंबी बात नहीं की होती, वो थक के हार के रोज सो जाते हैं। लेकिन ये हल नहीं है, ये एक टेम्पररी रिलीफ, एक क्विक फिक्स तो हो जाता है, क्विक फिक्स बड़ी अच्छी चीज है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन भी चीज़ों का ढूंढना हमारा काम है, हम इंसान हैं, हमारा एक जहन है, हमारी मेंटल फैकल्टीज, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज दुनिया के किसी भी मखलूक और किसी भी क्रिएचर से बहुत ज़्यादा हैं। सो ये हमारा जो स्ट्रेस में होना, अगर कोई ये समझता है कि वो 100% जिंदगी में स्ट्रेस से निजात पा लेगा, तो ये नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल बातें बंदा सोचता है और करता है जिंदगी में, क्योंकि दिस लाइफ इज नॉट अ कॉन्स्टेंट पार्टी, इट्स नॉट अ यू नो परमानेंट जॉय राइड, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, हार्डशिप्स होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, हर्डल्स होंगी, और आप एक एक करके उनसे कभी हारेंगे, कभी जीतेंगे, कभी आप उनको ओवरलुक करेंगे, कभी आगे बढ़ जाएंगे। सो ये जिंदगी ऐसी ही रहेगी, लेकिन कम अज कम हम जो कुदरती आफात, नेचुरल क्लैमिटीज जो हैं, या फिर जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, उनको छोड़ के बाकी तकरीबन 90% जो चीज़ें हैं वो हमारी अपनी पैदा करदा हैं, और उसमें हम इतनी टाइम, एफर्ट और एनर्जी वेस्ट कर देते हैं अपनी, कि हम बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे सकते, और हमारी एनर्जी लेवल कम हो जाता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों के बारे में कम हो जाती है, हम लोग बड़ी जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बड़ी जल्दी हम अपना जिंदगी का जो पैशन है वो लूज़ कर जाते हैं हम लोग। सो इसलिए हमें स्ट्रेस जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है हम लोगों के ऊपर। अच्छा, अजीब और अच्छी बात, इट्स अ वेरी पिक्यूलियर बट अ वेरी गुड थिंग इज, क्योंकि चीज़ जब डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, तो वो सबसे अच्छी चीज़ होती है। जिसके पास जॉब है उसको स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, बॉस का स्ट्रेस है, डेडलाइन कैच करने का स्ट्रेस है, हजारों स्ट्रेस हैं काम के। जो निकम्मा है उसके पास भी बहुत स्ट्रेस है, काम ढूंढने का स्ट्रेस है, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, उसको हैंडल करने का एक स्ट्रेस है, इस किस्म के और बड़े स्ट्रेस, लोगों की बातें ताने जो घर में सुनने पड़ते हैं उसका एक स्ट्रेस है, यू नो गुड फॉर नथिंग होने की एक फीलिंग है, उसका एक स्ट्रेस है, तो ये भी उसका भी एक स्ट्रेस है। जो लोग पैसे वाले हैं उन बेचारों के बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस हैं, हमें पता नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ समझते हैं पैसा जिंदगी में बहुत सारे कंफर्ट दे देता है, बिल्कुल दे देता है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी साथ लेके आता है। हर चीज़ एक पैकेज डील है, पैसा भी एक पैकेज डील है, इसके फायदे इसके नुकसान भी होते हैं, इसी तरह गुर्बत भी एक पैकेज डील है, उसके भी फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, हर चीज़ इस दुनिया में एक पैकेज डील है, यू हैव टू पिक गुड अलॉन्ग द बैड थिंग्स विद दैट पैकेज डील, बिकॉज ये दुनिया में कोई परफेक्शन नहीं होती, हम ढूंढते ज़रूर रहते हैं और ढूंढने में कोई कबाहत भी नहीं है, लेकिन जिंदगी इतनी परफेक्ट हो नहीं सकती, अगर हो जाए एक आदमी की तो बाकी उसको इम्परफेक्ट करके छोड़ते हैं, बाकी कोई बंदा भी उसको ना सुकून, अगर किसी आदमी को सुकून मिल जाए, इर्द गिर्द के लोग उसको भी बेसुकून करने की पूरी कोशिश करेंगे, اگر ایک آدمی کو عزت مل جاتی ہے ایک معاشرے میں, وہ بے عزت لوگ یا وہ جن کو بہت سارے کمپلیکسز ہیں وہ آپ کو عزت میں جینے نہیں دیں گے. انہوں نے پیغمبروں کو, لیڈروں کو, ولیوں کو عزتوں میں جینے نہیں دیا جو ان کی بھلائی چاہتے تھے. سو یہ انسان کا کام ہے, یہ اس قسم کی چیزیں وہ کرتا رہے گا اپنی زندگی میں. اور اگر ایک آدمی کو سمجھ آ بھی جاتی ہے تو اس سے صرف تھوڑے سے وقت کے لیے وہ آدمی اپنے آپ کے لیے کنٹینٹمنٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کے ماں باپ, اس کے بہن بھائی, اس کے دوست, اس کے کولیگز, اس کے لوگ جو اس کے ارد گرد ہیں, ان کو اگر وہ بات نہ سمجھا پاتا ہے نہ ان کے ساتھ, تو پھر وہ ان کے ساتھ چل نہیں پاتا, یا لوگ اس کو پھر گھسیٹ کے اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں, کیونکہ یو کی ناٹ ایگزسٹ ان آئسولیشن. تو اسٹریس سم ہاؤ, یہ ایک سینیریو تھا جو پیش کیا آپ کو, اسٹریس تو ہوگا, لیکن خامخواہ کا اسٹریس سے جان چھڑانے کے طریقوں کے اوپر آج ہم بات کریں گے, جو فضول میں ایک اسٹریس ایٹ دا بیک آف آر مائنڈ از اے پرماننٹ ریزیڈنٹ ایٹ دیئر پلیس. وہ پرماننٹ وہ جگہ جگہ لے کے بیٹھ گیا وہاں پہ, اور وہ پرماننٹ ہمیں جو ہے نا وہ فائلز پائل اپ کرتا چلا جا رہا ہے, اور ہم لوگ ایگزاسٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. بات بات پہ ہمیں رونا شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ, بات بات پہ ہم جذباتی ہو جاتے ہیں, بات بات پہ ہمیں لگتا ہے ہمارا کوئی نہیں ہے, یہ بات بات پہ ہمیں لگتا ہے یہ زندگی فالتو ہے, فضول ہے, اس قسم کی یو نو زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے, ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. سو اس قسم کی جو فیلنگ آتی ہے, تو آج ہم بات کریں گے ان تمام ایلیمنٹس کے بارے میں, ٹھیک ہے, ان عناصر کے بارے میں آج بات ہوگی کہ یہ کیا ہے. نمبر ہے اسٹوڈیو کا 972-501-9390. میں اپنی زندگی میں جو میں سیکھا اب تک, جو میں سمجھ پایا, وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا, کیونکہ میں آپ کی طرح ایک عام آدمی ہوں, مجھے بھی بہت سارے سٹریس ہوتے ہیں, کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں, کبھی میں ان کو کنٹرول کر کے تھوڑا منیمم کر لیتا ہوں, کبھی انکنٹرولیبل کچھ سٹریسفل فیکٹرز ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ کر نہیں پاتے. لیکن میں نے اتنا زندگی میں ضرور کر لیا ہے, کیونکہ میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کلیئرٹی کے بارے میں بات کرتا رہتا ہوں کہ دماغ کلیئر ہونا چاہیے آدمی کا. دماغ جتنا کلیئر ہوگا سٹریس اتنا کم ہوتا چلا جائے گا آہستہ آہستہ, کیونکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتی ہے چیزوں کے بارے میں. اس میں اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ ہماری ویکنسز کیا ہیں, ہماری اسٹرینتھس کیا ہیں, ہماری اپرچونیٹیز کیا ہیں, اور ہمیں تھریٹس کیا ہیں, سواٹ انالیسس جس کو بولتے ہیں, ایم بی اے میں پڑھاتے بھی ہیں, سواٹ انالیسس, اسٹرینتھس, ویکنسز, اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس. اگر یہ چار چیزیں ہمیں پتہ چل جائیں تو ہم ہر چیز کا پلان کر سکتے ہیں. آف کورس انفورسین جو چیزیں ہیں وہ تو آئیں گی, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کے ذہن میں ایک چیز, آدمی اتنا سمپل ہے کہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ سڑک پہ, ہائی وے پہ چلتے ہوئے جس گاڑی کے سامنے بھی, چاہے وہ کسی بھی ریس سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی ایج بریکٹ سے آدمی تعلق رکھتا ہو, کسی بھی سوسائٹی یا سوشل سیٹ اپ سے تعلق رکھتا ہو, میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جب بھی 18 ویلر کسی بھی گاڑی کے سامنے آ جائے گا تو ریگارڈلیس آف ہو سو ایور از ڈرائیونگ دیٹ کار اور وہیکل, وہ لین چینج کر لے گا اپنی. کیوں؟ کیونکہ 18 ویلر آپ کی ویژن کو ابسٹرکٹ کر دیتا ہے, آگے آپ کو کچھ نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے نا, آپ کی سائٹ جو ہے نا آپ کو نظر نہیں آتی آگے کچھ چیز, تو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اگر آگے ٹریفک بلاک ہے یا نہیں, آگے گاڑیوں کی رفتار کیا ہے, آپ رائٹ لیفٹ سے نکل سکتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ آدمی کا ذہن جو ہے نا وہ لاجیکل ہے, وہ لاجک کو دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے کوئی بندہ بھی, آپ خود بھی ابھی سوچ رہے ہوں گے جب میں یہ بول رہا ہوں, کہ جب بھی کسی ٹرک کے پیچھے یا بس کے پیچھے کسی بڑی چیز کے پیچھے آ جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو وہاں سے نکلنا ہوتا ہے, بیکاز آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. بالکل اسی طرح جب مائنڈ کو کچھ آؤٹ لیٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا پرابلمس کا جو اس کے ارد گرد ہیں, یا وہ پرسیو کر رہا ہے, یا وہ آبزرو کر رہا ہے, یا وہ فیل کر رہا ہے آپ کے تھرو, تو اس کا سٹریس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ لائن چینج کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. اور اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ وہ لائن چینج کرتے ہیں یا نہیں کرتے, چاہے وہ جاب کی لائن ہے, چاہے وہ فرینڈشپ کی لائنز ہیں, چاہے وہ محبت کی لائنز ہیں, چاہے وہ شادی کی لائنز ہیں, چاہے وہ چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہیں جن کو آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے, ان لائنز سے وہ ہٹنا چاہتا ہے لیکن آپ اس کو ہٹنے نہیں دینا چاہتے کیونکہ آپ ہینڈی کیپ ہو جاتے ہیں ایک لمبے عرصے کے لیے. کہتے ہیں نا, یو لیو ایٹ سم پلیس فار لانگ یو بیکم دیٹ پلیس, کسی بھی جگہ پہ آپ بہت لمبے عرصے کے لیے رہنا شروع کریں تو آپ وہ جگہ بن جاتے ہیں, اس کے بغیر آپ کو کہیں پھر سکون نہیں ملتا. سو یہ سارے فیکٹرز ہیں जिनकी वजह से हमको स्ट्रेस होता है। ये तो सिर्फ एक दो फैक्टर्स हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए, लेकिन आप लोगों से मैं चाहता हूँ कि आप लोग बताएं कि आपके ख्याल से ये जो नई आजकल की जो ज़िंदगी है इसमें स्ट्रेस इतना क्यों बढ़ गया है, रीज़न क्या है। अगर आप रीज़न बताएंगे ना तो फिर हमें पता चल जाएगा बड़े आराम से, बड़े सुकून से। आज का शो बिल्कुल बच्चों की तरह हो रहा है, क्योंकि मैं अपने आप को भी उससे छोटे बच्चे की तरह समझाता रहता हूँ कि मेरा पुत्र ऐसे ना कर, ऐसे करके देख ले, ऐसे कर ले। तो आज ये शो भी है इस तरह बड़ा लाड़ प्यार से होगा। कोई भी ऐसा स्ट्रेस जो आपको समझ आता है, कुछ इस स्ट्रेसफुल लाइफ के, ये स्ट्रेस जो हम परमानेंट एक फील कर रहे हैं, मैं, आप, हम लोग, इसके रीजंस क्या हैं, उन रीजंस के बारे में हम बात करेंगे और फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। और आदमी अपने आप को क्योंकि रिकग्नाइज नहीं कर पाता है, सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। आदमी होता कोई और है, लेकिन उसको दुनिया, सोसाइटी, माहौल, कम्युनिटी, फ्रेंडशिप, सोशल प्रेशर्स, पीयर प्रेशर्स, एंग्जाइटी ऑफ यू नो हाउ द वर्ल्ड इज, बिकॉज यू कैन सी टू मच नाउ दैट यू कैन नॉट हैंडल, दैट यू कैन नॉट ग्रैस्प, दैट यू कैन नॉट कंसीव प्रॉबली। हर चीज़ कॉन्स्पिरेसी थेरी सी लगने शुरू हो जाती है आदमी को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। सो ये सारी चीज़ें हमने नोट करनी है। कोई है हमारे साथ, करते हैं उनसे बात। हेलो, यू ऑन द एयर। तारिक साहब कैसे हैं सर, खैरियत से हैं?
Yes, of course, so good. But I like your example of the 18 wheeler. That's why I was smiling. And
do you do that? Do you also do that, or is it just me?
Me too. That's what I'm saying. I was smiling on myself. That, oh my God, this is a so good example. Actually, how the things come in and we don't see anything in front of me, and we are so.
So what do you think? What do you think are the reasons of the modern day life stress?
Actually, stress will be there anyway, and now it depends how we control our stress. And it is very man to man, you know, person to person, that how they do that. Sometimes people can keep up their stress online and do it without anything, and sometimes they are just, you know, they're just a kid and they start crying. So the stress is there every day. It's everybody have the stress, you, me, and anybody. So I don't know, main thing is how to control them. That's the main thing. Anytime something is there. Anyway.
What steps have you taken in your personal life to handle your stress?
First thing, we try to don't think of that stretch for a few minutes. You know, for me, I like to cook, so I start cooking. I start cooking, and maybe because of the cooking, you know, so you always try to engage yourself, you know, what is it's basmati kora or nimak tikai or it's a jajaya or nahi. So I just try to get off that thought for like 15 minutes or half an hour. And after cooking, if the food is good, I start eating. And maybe it's gone for a few hours, but it comes back. But, for the temporary reason, I can do that.
So cooking is therapeutic for you?
Yeah. It's work for me. Okay. I like it. Yeah.
Anything else? Any other steps that you take whenever you're feeling that there is a lot of stress? For example, there is a lot of stress in your workplace. How do you handle it?
I talk with my wife. I talk with my I have few good friends, like a very, very close friend. I talk with them, and this is a good way. You know, sometimes they understand me, so sometimes they give me some advice. They think, okay, hey, this actually he was right, and you are doing wrong. Why you are doing something that actually you're wrong? So I understand from my own guys that okay, yes, they are true that I'm doing something wrong. Then I realize myself and go back to work and I apologize for that.
So what you do is you communicate first with your friends and your peers and you know your wife and get a fresh perspective or second opinion on it, and they can give you a better perspective, and then you go ahead and make some decision according to that, and that actually releases your stress.
Happens to me a lot.
Okay. If somebody asks you, what should they do when they are feeling, you know, stressed out?
Well,
What do you suggest?
The same thing again. You know, every person have their ability to control the stress is different.
Mm-hmm.
So, you know, when somebody tell you, so instead of giving your perspective, try to understand him first.
Mm-hmm.
That actually how far he is taking the stress. He's stressing because he's driving sometimes. There's a, all of a sudden somebody coming in front of him and he got freaked out, you know. Or sometimes people go very, very far, you know.
Mm-hmm.
There is no money in the bank, but he's still, he is putting the credit card.
Mm-hmm.
So, you know, we have to understand that specific person, that how it is. Then you can say something and, you know, like a little thing. And if it is really hard,
it's okay.
You know, actually, we, salvation, we don't go, in our country, we don't go for the doctors or psychiatrists.
Mm-hmm.
Oh, because if we go, people think that going to psychiatry is a puddle.
They have become a psycho.
Psycho, that's why, yeah. But it is, in this country, when I come over here and I talk with some psychiatry, and yeah, they practice so well. Actually, they give you so good
advice.
They know the methods.
Mm-hmm.
They know the methods. So take the professional help, please. Because mm-hmm. to go to the faculty is not your man, guy, or your psycho.
Mm-hmm.
But take the professional help. They will, maybe there is a small stress, but you will not feel like that when they go, oh, that's so well, you know, it
mm-hmm.
happens. But we should do it more because we, in like in population, we don't go to the psychiatry because they think that, oh,
mm-hmm.
no, this is the last thing you have to do.
Mm-hmm.
I should let them know when it is not happening in talking each other or peer or friends.
Sir.
They don't make you stressed down.
Sir.
Take the professional
out. Nice of you, sir. Thank you very much. Tariq Yasin صاحب تھے جی ہمارے پاس اور ایک کپ چاہ کا بہت ہی خوبصورت شو جو آپ سنتے ہیں سنڈے کو. Nice of you, sir. Thank you very much. اور کتنے پیار سے انہوں نے کتنی آسان طریقے سے بتایا کہ وہ اپنا اسٹریس کیسے دور کرتے ہیں. اور یہ بڑا تھراپیوٹک راستے انہوں نے بتائے جی. ایک تو کوکنگ, کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو اچھی لگتی ہے نا, جو آپ کا دھیان بانٹتی ہے, اس میں سے کوکنگ ایک بہت اچھی چیز ہے. میرا سٹریس جو ہے نا وہ بڑا, جب بھی میں کوکنگ کرتا ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. اور خود چیز کو بنا کے کھانا, اسپیشلی اگر آپ کو کھانے پینے کا شوق ہو تو بہت سارا دھیان آپ کا بڑھ جاتا ہے. اور کوکنگ بہت ہی تھراپیوٹک چیز ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کمیونیکیشن, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جب بھی ہم سٹریس فیل کرتے ہیں تو کوئی ایسا بندہ جو کہ آپ کو جانتا ہے, سمجھتا ہے, ہر بات ہر بندے کو بتانے کی نہیں ہوتی ہے, لیکن کوئی بھی ایسا آدمی جو اس پرٹیکولر فیلڈ یا آپ سے ریلیٹڈ ہے, اس سے آپ یہ بات کر سکتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں, تو ضرور اس کو کمیونیکیٹ کریں. اور کمیونیکیشن سے کیا ہوتا ہے, آپ کو ایک فریش اوپینین مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ اوپینین مل جاتا ہے. سم ٹائم اٹ جسٹ ہیلپس یو گیٹ دا پرسپیکٹو آف دا ہول تھنگ وداؤٹ بینگ ویری اموشنلی اٹیچڈ اور یو نو اموشنلی انکلائن ٹو ورڈ سم تھنگ. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مشورہ کسی کو کیا دیں گے, تو انہوں نے جو کہا نا کریڈٹ کارڈ والی بات, کہ لوگ زیادہ جو ہے وہ خرچ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پریشان ہوتے ہیں, تو اس کو آپ اس ضمن میں ڈال سکتے ہیں کہ بی پریکٹیکل, بینگ ریئلسٹک, کہ آپ کی فائنینشیل سچویشن کیا ہے, جتنی چادر ہے آپ اتنے پاؤں پھیلائیں تو اسٹریس کافی کم ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ایک اور پوائنٹ انہوں نے دیا ہے اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کرنا ضروری ہے. پروفیشنل ہیلپ, ہمارے لوگوں کا جو مائنڈ, ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, اس کو جب تک ہم بدل لیں گے نہیں, نئے زمانے میں ہم ایڈجسٹ ہو نہیں پائیں گے. دیکھیں ہم ریلیجن کی جب بات کرتے ہیں نا, ریلیجن بڑا اڈیپٹیو ہے, وہ تمام زمانوں کے لیے آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور تو آف کورس اگر وہ تمام زمانے اور رہتی دنیا تک کے لیے آیا ہوا ہے, تو اس نے فورس ہی کیا ہوگا یہ ساری چیزوں کو, اس لیے کچھ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں ہیں اور باقی ساری چیزوں کو اس نے اوپن چھوڑا ہوا ہے. اس میں جب ہم لوگ, یہ اب یہ زمانہ وہ نہیں ہے جس میں سائیکالوجسٹ کے پاس یا سائیکیاٹرسٹ کے پاس جانے سے لوگ آپ کو پاگل سمجھنا شروع کر دیں. جیسے زکام لگتا ہے آپ اس کا علاج نہ کرائیں, پرماننٹ لگا رہے, الرجی رہے آپ کو, الرجن برونکائٹس وہ بن جاتا ہے, اس کے بعد اکثر وہ ایزما بن جاتا ہے, اگر وہ نا کوئی الرجی انڈیوز ایزما ہوتا ہے, اور بہت ساری ریزنس انڈیوسڈ ایزما ہوتے ہیں, اسٹریس انڈیوسڈ ایزما. یہ ایک نیا, یہ ایک بات مجھے یاد آ گئی اس کے بیچ میں ایزما کے بارے میں بات کرنے سے, دمہ جسے کہتے ہیں, اسٹریس انڈیوسڈ ایزما بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم کو تھا، اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ. ویسے انفارمیشن ایک دم جو ایٹ اسپر آف دا مومنٹ ذہن میں آتی ہے وہ ویسے ہوا میں نہیں آ جاتی، کہیں نہ کہیں اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. کوئی بھی آدمی اتنا زیادہ اس کا دماغ نہیں کام کرتا کہ وہ چیزیں یا تو اتنی لکھ لے یا اتنا کچھ کر لے. سو اسٹریس انڈیوز ایزما بھی ایسے ہوتا ہے، آپ کا سانس بند ہونے لگتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک لفافہ ہونا چاہیے، آپ اس میں سانس لیں. اور اس کی بڑا پوری بیک گراؤنڈ اسٹوری ہوتی ہے کہ وہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا، آپ کے جو بیک آف دا مائنڈ میں کیا وہ چیزیں ہیں، کون سی چیزیں، کون سے فیئرس جو ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں آپ کے، اور کون سی چیزیں جس میں آپ نے آپ کو لمٹ کے اندر محسوس کرتے ہیں، لمٹنگ محسوس کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں. سو آج کل کے زمانے میں جس کو بھی، اور اگر نہیں کرتے آپ تو وہ پرماننٹ پوری زندگی کا ایک مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس کو فگر آؤٹ کر کے اس کو حل کرنا بہت ضروری ہے. سو سائیکالوجسٹ کے پاس اگر آپ جائیں تو ضرور جائیے، اپنا انالیسس کروا لیں. بہت ساری باتیں جو آپ کسی اور کو نہیں کہہ سکتے آپ ڈاکٹر کو ضرور کہہ سکتے ہیں. ڈاکٹر کو اور وکیل کو سچ بتانا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسی طرح ہی آپ کو پھر بچا سکتا ہے اس کے اندر سے. ایک بات جو میرے ذہن میں ہے، جو میں ہمیشہ کہنا چاہتا تھا، سم ہاؤ میں نے آپ لوگوں سے نہیں کہہ پایا کسی بھی شو میں، دیسی بندے کی سائیکالوجی سمجھنے کے لیے صرف بیسک نالج آف ہیومن سائیکالوجی ضروری نہیں ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ بعد میں آپ میری طرح ہنس رہے ہوں گے، لیکن یہ بات سچ ہے. کیونکہ جو مین سٹریم کے سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں نا، ان کا جو اپ برنگنگ ہوتی ہے، جو ان کی مینٹل کنڈیشننگ ہوتی ہے، جن نیڈز اور وانٹس کو وہ اپنی سوسائٹی میں بڑا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، وہ نیڈز اینڈ وانٹس نہیں ہیں جو ایک دیسی بندے کی جو ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں. سوری آواز چلی گئی تھی، اگر آپ سمجھ لیں گے کنیکشن میں نہیں، چھینک آ رہی تھی. سو چھینکنے کی معافی چاہتے ہیں، لیکن قابو میں نہیں ہوتی یہ چیز. اچھا کہتے ہیں جی چھینکتے ہوئے بھی آدمی مر سکتا ہے. ارے یار آدمی تو کسی بھی طرح سے کسی بھی بات پہ مر سکتا ہے. سو تو جب بھی کسی آپ کو کوئی بھی ایسا پرابلم ہو جو آپ کو سوسائٹی کی وجہ سے ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے مسائل جو ویسٹرن ورلڈ میں نہ دیکھیں نہ وہ کبھی سمجھ پائیں گے کہ اس میں اتنی کون سی بڑی بات ہے، لیکن جب تک بندہ جو ہے وہ ہماری کمیونٹی کا نہ ہو، اس نے یہ ساری چیزیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان جگہوں پہ دیکھے نہ ہوں کہ یہ کیا لوگ کتنا امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ ایلیمنٹ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور وہ نہ کرتے کرتے نہ کرتے کرتے سالوں لگ جاتے ہیں ہم کو، ہم اس ایلیمنٹ سے جان نہیں چھڑا پاتے. سو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی دیسی سائیکالوجسٹ جو ہے اس کو ضرور اس کے پاس جائیں، تاکہ وہ سمجھ سکے کہ آپ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اتنا زیادہ سٹریس ہو رہا ہے. کوئی ہے ہمارے پاس؟ نائس آف یو طارق صاحب، بیوٹیفل کال ایز یوزول. ہیلو، یور آن دی ایئر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سر جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
ابھی آپ نے جو بات کی بیسک نالج،
سر
آئنسٹائن تو کہتے ہیں نالج نام کی کوئی مطلب یہ کہ ہم کو وی آل ہیو انفارمیشن بٹ ناٹ نالج.
سر ابھی سر آپ نے میری آئنسٹائن سے اگر منڈ بھیڑ کرانی ہے، میرے سامنے بیٹھے ہوتے تو میں ان کی بہت ساری باتیں غلط ثابت کرا دوں. نہیں لیکن اگر میرے وہ سامنے بیٹھے ہوتے نا، تو سوائے سائنس کے اوپر انہوں نے جو کچھ کہا ہے، کیونکہ اس میں وہ اتھارٹی تھے، لیکن ہیومن سائیکالوجی کے اوپر وہ اتھارٹی نہیں تھے. اس کے ساتھ ان کے ساتھ بڑی لمبی ڈسکشن ہونی تھی. پھر
بالکل صحیح، میں ڈرائیو کر رہا تھا کل صبح، یہاں پر ایک ہاسپٹل ہے باہر میں، آئنسٹائن کی بہت بڑی تصویر ہے ایک بورڈ پہ، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ وین آئی واز ان اسکول آئی واز ناٹ آئنسٹائن.
بالکل ٹھیک.
اور یہ کہ بات جو ہو رہی ہے، دیکھیے سائنس تو شروع سے تھا
جی،
دنیا بنی
جی،
ٹیکنالوجی نہیں. یہ ہمیں جو میں سمجھتا ہوں ناقص عمل عقل میں، کہ ہمیں جو اس دور میں جو اسٹریس میں ڈالا ہوا ہے
سر،
وہ ٹیکنالوجی نے بھی ڈالا ہوا ہے
سر.
اور دوسرے مذہب ہر دور میں تھا
سر،
لوگ مذہبی تھے شروع سے
جی،
لیکن دیندار نہیں تھے.
بالکل.
تو
سر یہ نا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ابھی آپ نے جو کی ہے، لوگ مذہبی شروع سے تھے، مذہبی رجحان شروع سے تھا، کیونکہ وہ سوچتے تھے اور کامن سینس اس بات کا احاطہ نہیں کر پاتی تھی ان کا کہ یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ. حالانکہ اس زمانے میں اس قسم کی سائنس اور یہ نیا زمانہ نہیں تھا، نہ وہ چاند پہ گئے تھے، نہ مارس پہ گئے تھے، نہ وہ الجبرا اور نہ اور بہت ساری باتیں تھیں، لیکن ان کو یہ ضرور وہ سوچا کرتے تھے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آ گئے.
علم تو تھا.
بالکل علم تھا.
آئی او مینس ٹو نو. मतलब साइंस तो थी ना
जी,
जो किताबों के जरिए भी आई और लोगों के जरिए भी आई, लेकिन ये कि हमारा मसला जो है वो मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम में नहीं है, बहुत ही छोटा, हम अगर बहुत ही इसको माइन्यूट नुक्ते में डाल दें तो जिंदगी आसान हो।
और सर उसी के लिए कह रहे हैं कि आज का जो शो है ना, कि प्रैक्टिकल जो चीजें हैं जो हम अपनी जिंदगी में डेली लाइफ के अंदर हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिससे आपका हमारा और हमारी बेसिक जिंदगी का जो स्ट्रेस कम हो। आपके आपके ख्याल में कौन कौन सी चीजें, रीजन बता पाएंगे नए जमाने में स्ट्रेस इतने ज्यादा क्यों?
एक तो हम जो है दूसरों की तरफ देखना ही छोड़ दें
सर।
सबसे पहला तो ये, हमें जो स्ट्रेस में डालती है वो सराउंडिंग भी डालती है
सर।
दूसरे ये कि हम जो है वो कहते हैं, अगर आपने एक दफे अपने बहुत पहले एक शो में कहा था, एक साहब एक मसला लेके आया था, साइकेट्रिस्ट के पास गए थे कोई साहब उनको लेके, उन्होंने मसला ये बताया था कि मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता
जी जी,
है ना। तो उसके लिए भी जो है वो मजहबी पहलू ये है कि एक बुजुर्ग गए थे, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने कहा भाई दुनिया में उनका मैंने खाना बंद कर दिया फिर भी जो है वो नमाज नहीं पढ़ता है।
मतलब
देखो दुनिया में जो अरबों लोग करोड़ों लोग जो है वो नाफरमान है
सर,
उनका तो अल्लाह ताला ने रिस्क नहीं बंद किया।
मुझे सर ये बताइए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपका ना अभी जो आपको जो पैरालिसिस का अटैक हुआ था, ऑफ कोर्स इट्स वेरी लिमिटिंग और एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके बावजूद आपकी आवाज़ कुछ अरसे के लिए शुरू में और उसके बाद आपकी आवाज़ में खनक भी वापस आई, आपका जो सारा जो पर्सनैलिटी है वो सारी नज़र आना शुरू होगी, तो मुझे बताएं इतने बड़े चैलेंज से जब आप नबर्द आजमा थे तो उस वक्त कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपके अंदर पॉजिटिविटी इंस्टिल करती थी, या आपके इस इतने बड़े स्ट्रेस को जो कि एक पहाड़ जैसा एक स्ट्रेस है आपके सर के ऊपर, उसको क्या क्या चीज़ें आप और क्या क्या हीले बहाने करके उसको टालते रहे?
बड़ा जो स्ट्रेस है वो आज तक है वो इकोनॉमिक स्ट्रेस होता है
सर।
उसको मैं कहां कहां से कैसे कट डाउन करूं, कैसे सर्वाइवल जो है वो वहां पे मसला हो रहा है
जी।
इसलिए कि मैं जो है बुनियादी तौर पे मैं किसी रेट रेस में कभी नहीं रहा
सर,
और मैं जो भी मुझे मिला है वो बहुत ही मैं उससे मुतमईन हूं, और मैं हमेशा नीचे देखता हूं, इसलिए मैं हमेशा जो है बहाने रहता हूं, और मैं लोगों को वो तंबीह भी नहीं करता, इसलिए कि मेरा जो अब तक है ना 80% मेरा जो है वो अल्लाह की फजल से मैं डिसफंक्शनल नहीं हूँ, अपना काम थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, 20% रहता है, उसमें कभी कभी जो है इजाफा होता रहता है, इसलिए कि डॉक्टर के पास जाओ तो चूंकि उसको स्ट्रोक नहीं हुआ है तो उसको अंदर का जो है हाल नहीं पता, खबर का हाल तो मुर्दा ही जानता है, तो वो कहता है वो अपने जान छुड़ाने के लिए, जैसे एक जमाने में था ना कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये वायरल है आपको, ठीक है ना, तो वो कहता है भाई ये परमानेंट डैमेज है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसके साथ वो रिलेट कर देता है कि भाई आपको जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है कि जो है इसके लिए कोई दवा वा नहीं है,
ठीक है,
पेन किलर खाए फलाना खाए, तो बहरहाल अब जो है वो हर आदमी को एक
कैसे सर कैसे फिर आपने ना यही तो सवाल है, इतना बड़ा स्ट्रेस जो है इसको फिर आपने कैसे जो है सबसाइड कैसे करते हैं, गम गलत कैसे करते हैं?
बहुत सी चीजें बहुत ही ज्यादा जाती होती हैं
जी,
अब उनको मैं जो है वो मैं किसी से नहीं, अपनी बीवी से नहीं,
करना भी नहीं चाहिए सर। लेकिन
वालिद साहब का मुझे अपने याद है
जी
कि हमारी एक जमीन थी कराची में और वो उसकी कीमत उस जमाने में 4,500 थी, 1950s की बात, late 1950s, तो हमारे वालिद साहब परेशान रहते थे, इसलिए 150 उनकी तनख्वाह थी, रेडियो पाकिस्तान में थे वो, हालांकि थे गैजेटेड ऑफिसर थे, कुंबा था बड़ा जो भी है, तो वो ये बातें हमारी वालदा से भी नहीं कहते थे, उनके एक दोस्त थे, वो बचपन के दोस्त थे, उनसे वो शेयर करते थे वो सिर्फ, ये बात है वो उनके गुजर जाने के बाद हमें पता चली, उन्होंने बताई, तो उन्होंने जमाने में नया टीटी निकला था, बैंक टू बैंक जो ट्रांसफर निकला था
जी,
तो वो उन्होंने उनके पैसे दे के वो जो है वो जमीन जो है बचा ली थी
सर।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब वो बात चीजें ऐसी हैं कि आप भी अपने तक महदूद रखते होंगे, बल्कि
बिल्कुल सर, मैं तो हालांकि लोगों को बड़ा ओपन सा है,
लेकिन आदमी को कंटेंटमेंट जो है ना बड़ी जरूरी चीज है
सर। तो सर आप में पैदाइशी कंटेंटमेंट है या इसके ऊपर काम किया है आपने? दो चीजें होती हैं, जैसे खलीक साहब की पैदाइशी,
खलीक साहब ने तो अचीव भी बहुत कुछ किया है ना भाई, क्वालिफाइड आदमी है, मैं इतना अचीव ही नहीं किया कि मुझे कुछ ज्यादा अफसोस हो।
ये जिस तरह इकोनॉमी ने जब हिट किया यूएस को, तो टैक्सेस को सबसे कम किया, क्योंकि इतना कुछ खास था भी नहीं हमारे पास। नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मिस पॉल हक साहब थे जी हमारे साथ, बहुत ही खूबसूरत कॉल। नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। और अब आपको इसी तरह कंटेंट रखे, और जो चैलेंज है आपको, उन्हें बहुत अच्छी बात की जी उन्होंने, और मैं बहुत सारे मैंने आपने मेरे अब तक तकरीबन 1000-1200 शोज में कर चुका हूँ, 5-10-20 तो सुने ही होंगे हम सब ने मिल के। तो आप अक्सर सोचते होंगे मैं अपने बारे में, अपनी खान जी के बारे में, अपनी मदर के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताता हूँ, लेकिन एक बात याद रखिए जो हमेशा मैं आपसे कहता आता हूँ, मैं एक पठान आदमी हूँ, हमारा एक कल्चर है और मेरा एक माइंडसेट है। ज़िंदगी की जो 8-10 बातें जो मेरे बहुत बड़े दुख और जो मेरी इंतहाई पर्सनल बातें हैं, वो मैंने ना कभी किसी से की, ना मैं कभी करूँगा, क्योंकि ये वो दुख जो होते हैं ना, वो मेरी स्ट्रेंथ है। वो दुख जिनको मैं, वो इंसान को पुराने ज़माने में बुजुर्ग कहा करते थे, जा बेटा रब तुझे दुख दे, दर्द दे। तो वो जो दर्द है ना इंसान के, वो दर्द वाकई अपने तक रखने के होते हैं, और मैंने ना कभी उसके बारे में बात की, ना कभी लोगों ने सारी ज़िंदगी 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 साल, इवन मेरे फादर भी पूछते रहे, दुनिया भी पूछती रही, लेकिन उस बात का लोगों से, उनकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। जो चीज़ मेरी पर्सनल है, प्राइवेट है, वो मैं कभी किसी से डिस्कस नहीं करता, लेकिन माँ बाप सांझे होते हैं, ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो सांझे होते हैं, जैसे बच्चे सबके सांझे होते हैं, आप उनकी बेहतरी के लिए चीज़ें करते हैं। कुछ चीज़ें ह्यूमन लेवल के ऊपर, ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए, क्योंकि इंसानियत से मेरा बहुत अटूट किस्म का एक परमानेंट एक रिश्ता है, और वो उसमें दुख भी है, उसमें खुशी भी है, उसमें इंसान होना भी है, उसमें बहुत सारी बातें, लेकिन फिर भी वो हमेशा जो शो में, प्राइवेसी के शो में अगर आप दोबारा सुन पाएँ, कुछ चीज़ें प्राइवेट हैं, उसमें आपको सिर्फ अपने तक रखनी चाहिए, और उसके दो रीज़न हैं। एक तो कुरान कहता है जो शख्स अपने राज को छुपा गया वो अपनी मुराद को पहुंच गया, और हज़रत उमर का कौल है जो आदमी अपने राज को पोशीदा रखे गोया वो अपनी सलामती को अपने काबू में रखता है। बहुत सारे लोग इमोशनल होकर आपसे अक्सर ज़िंदगी में गिला करेंगे कि वो आप उनसे बात नहीं शेयर करते, आप उनसे कम्युनिकेट नहीं करते। गलत कहते हैं वो लोग, क्योंकि आप सब कुछ भी कम्युनिकेट कर दें किसी से, तो एक दो चीज़ें आप नहीं किसी से कम्युनिकेट करते, और किसी का हक नहीं है उसको पूछने का, और किसी का हक नहीं है उसको जानने का भी। कुछ चीज़ इंसान और उसके रब के बीच में होती है, कुछ चीज़ इंसान और उस एक कोई ना कोई चीज़ उसके इंसान और उसके ज़मीर के बीच में होती है। जैसे, और मैं बड़ी क्रूड सी, बड़ी बुरी सी, बड़ी फ़नी सी एग्जांपल है जो अक्सर देता हूँ मैं, लेकिन इससे बेहतर कोई एग्जांपल नहीं। आप जिससे जितनी मर्जी मोहब्बत कर लें, आप कभी भी अपने साथ किसी को बाथरूम नहीं लेके जाते, वहाँ आपका प्राइवेट टाइम है, आप जो करते हैं वो आपके लिए है, वो आपके लिए, दुनिया का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह ज़िंदगी के 3-4 पहलू सिर्फ अपने तक रखने चाहिए, और जिसमें से एक चीज़, बाय द वे मैं फिर लोगों को बता दूं, हमने भी शो किया था, मियां बीवी के आपस के ताल्लुक को जब भी तीसरे बंदे तक या चौथे पांचवें छठे बंदे तक बातें बताई और पहुंचाई गई हैं, वो रिश्ते टूट जाते हैं, नहीं जुड़ पाते फिर वो रिश्ते। कुछ रिश्ते दो बंदों के बीच होते हैं, सिर्फ उन दो बंदों को उसके बारे में पता, और उन दो बंदों को ही एक दूसरे का दवा दारू होना चाहिए। आज तो बंदा बंदे का मारू हो गया ना, एक ज़माने में बंदा ही बंदे का दारू था, और आज भी है। सो दो आदमी जब आपस में नाराज होंगे तो तीसरा बीच में नहीं आएगा, ना उसको पता चलेगा ना कुछ, और तो उन दोनों ने ही आपस में एक दूसरे को राजी करना है अगर साथ चलना है तो। एक दूसरे के छोटे मोटे गिले शिकवे आपस में ही वो करेंगे तो ये रिश्ता चलेगा। और मियाँ बीवी का रिश्ता स्पेशली वो रिश्ता है जिसमें आप अपने लिबादे की तरह, लिबास की तरह कहा गया है, क्योंकि लिबास से तन नहीं छुपता और तन से लिबास नहीं छुपा हुआ, वो दोनों लाजिम और मलजूम हैं, साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो बाकी लोगों, और जब ये दोनों साथ होते हैं तो बाकी लोगों को तन भी छुपा हुआ मिलता है, समझ रहे हैं इस बात को, जिसमें नज़र नहीं आता अगर है। ये और बात है कि आजकल हमने कपड़े ऐसे ईजाद कर लिए हैं जिसमें फिर भी ये इश्यूज़ हैं। सो तो उसमें फिर कोई ना कोई ख़राबी है। ये कुछ चीज़ें जो बचपन में मैं समझ गया था, और मैं अपने फादर की वजह से समझा था। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन कभी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, ना उन्होंने कभी बताई, ना मैंने कभी पूछा। मैंने, मेरे छोटे भाई को बहुत शौक था, वो अक्सर पूछा करता था, और उन्होंने कभी नहीं बताई उनको। और बताना भी नहीं चाहिए। वो कहते थे इस इलाके में, इस गांव में तुम्हारे बाप की या हमारी जो इज्जत है वो इस वजह से है कि मैंने कभी किसी से कोई कभी उधार नहीं लिया, ना किसी को मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन का पता है, और इन दो बातों की वजह से वो लोग समझते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, उनको समझने दो, जिंदगी इसी तरह अच्छी गुजर जाएगी। सो दूसरी चीज, ये मियां बीवी के आपस का जो ताल्लुक है या महबूब और मुहिब का जो आपस का ताल्लुक है, ये किसी दूसरे बंदे का काम नहीं है पता करने का। गुरु और चेले का जो आपस में रिलेशनशिप है, शाह शम्स तबरेज का मौलाना रूमी से लेके या मुरीद का गुरु के साथ जो भी रिश्ता है, वो किसी तीसरे बंदे का नहीं है। आप उसमें नज़में गज़लें गा सकते हैं जो आप करना चाहें, लेकिन वो फील कैसे होता है ये जो, और आप बता भी नहीं सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप अपने तक रखेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, क्योंकि जब भी तीसरा बंदे के बारे में आप उसको अपनी परेशानी बताएंगे, वो पूछता रहेगा उस मसले का क्या हुआ, ऐसे क्यों नहीं कर लेते आप वैसे, और वो हर वक्त वो दिमाग में फिर आपके मसला रहेगा। कुछ मसले इंसान को बनाने के लिए रब ने दिए हैं, उससे आदमी बनता है, जैसे गोश्त पोस्त और हड्डियों से आदमी बनता है ना, इसी तरह इंसान जो है वो इस तरह बनता है अगर हम इसको समझ जाएं। ये रोने पिटने से, मसले बयान करते रहने से, चीज़ें करने से नहीं होता, और लेकिन छोटी मोटी जो बाकी चीज़ें वो हमेशा उसके इर्द गिर्द डिस्कस की जा सकती हैं। कोई है हमारे साथ, करते हैं उनसे बात। है लेकिन सर जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु जी, अल्लाह के करम से दुआएं आपकी,
आपकी बातें कितनी प्यारी होती हैं,
बहुत ज्यादा।
मैंने देर से खोला, बिछे से पहले हुआ था, गया हुआ था, मतलब मेरी दूसरी बेटी का भी प्रॉब्लम कुछ हो गया था, उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ा, तो मेरे ऊपर ना मतलब है कि आजकल बोझ पड़ा हुआ है, लेकिन मैं फिर सक्सेसफुल नहीं कहता, मैं कहता हूँ जो अल्लाह ताला जो कुछ प्रॉब्लम होता है उसको फेस करें, ग्रेट करेज एंड
मैं गवाह हूँ सर इसका, एनी शायद और एनी गवाह हूँ मैं इस बात का कि इतने बड़े जिस इतने बड़े चैलेंज से जो उस वक्त 3-4 महीने से आपके साथ चल रहा है, उसके बावजूद मैंने आपको हंसता खेलता हुआ, वॉक अपने काम अपने करता हुआ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करता हुआ, खाना शाना पकाते हुए और अपने वही काम जो आप करते थे वो कर रहे हैं साथ साथ, बड़ी बात।
असली ये है कि मैं बहुत क्लियर हूँ, ये मैनेजमेंट और स्ट्रेस आप जानते हैं बहुत सी चीजें हैं, यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, यू नो, अपने थॉट्स को, अपनी इमोशंस को, अपने स्केड्यूल को, एंड द वे यू डील विद प्रॉब्लम्स, यू नो, दिस इज व्हाट स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने का यही तरीका है। और दूसरी ये बात है कि अगर इंसान की आप अपने आप को लाइफ को ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें, लोगों के अंदर गलतियां तलाश नहीं करते रहें, और मतलब यह कि अपने आप को क्लीन रखें और ट्राई टू बी ऑनेस्ट एंड ट्राई टू बी ट्रूथफुल, और मेरा ख्याल है कि यू विल सी दैट स्ट्रेस, जब प्रॉब्लम्स अक्सर लाइफ में आते ही हैं, कभी छोटा और बड़ा प्रॉब्लम आते रहते हैं, तो वो चैलेंज होते हैं, अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, देखिए ना, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, उसमें तो घबराना नहीं। अब मेरी 84 ईयर्स हो गई है, इतनी ब्यूटीफुल लाइफ गुजरी है, इतना मजा आया है, आई हैव एंजॉयड इट, हेल्थ इज गुड, लोग हैरान होते हैं 84 के, आई डोंट बिलीव इट, एवरी प्लेस आई गो ऐसी बात होती है, वो मतलब है कि लोग अक्सर मुझसे हॉस्पिटल में आजकल पूछते हैं, हैरान होते हैं कि भाई हेल्थ इज सो गुड, इसलिए कि मैंने ये जो है ना स्ट्रेस का चक्कर कभी चलाया ही नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी अल्लाह देता है उसी के अंदर वर्क करो, यूज योर हार्ट एंड सोल एंड ब्रेन जो है, माइंड जो है आप कहते हैं, तो उसको करेंगे आप और अपने दूसरों में अच्छाइयां तलाश करेंगे, मतलब मोहब्बत से हर एक से रहेंगे और नफरत नहीं करेंगे और अपनी लाइफ को क्लीन रखेंगे और बिजी रखेंगे, और बहुत सी चीजें वैसे जो लोग जो है
बिजी रखेंगे
के बारे में अक्सर करते हैं, आप कहते हैं भाई अब तो क्या करना चाहिए, ईट वेल, यू नो, लिमिट, अल्कोहल नहीं पियो, कैफीन वगैरह नहीं करो और शराब का चक्कर ज्यादा नहीं चलाओ, थोड़ी थोड़ी पीनी है, कभी जो लोग कहते हैं उनको करो बेशक थोड़ा, लेकिन अच्छा सुनो, लेकिन एक्सरसाइज करते रहो जैसे आप कहते हैं। और
सर खलीक साहब, आपने ना बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो है ना वो जल्दी जल्दी में दे दिए, मैं जरा इनको एलैबोरेट करना चाहूंगा। एक तो जो आपने कहा, जो आपकी बातों में एक चीज थी मॉडरेशन के बारे में, उन्होंने बात की, मॉडरेशन बहुत जरूरी है। ये पागल नहीं है वो लोग जो हमें सदियों से समझा रहे हैं कि म्याना रवि इख्तियार करें आप, और जो मिडिल वे है उसको आप लोग यू नो कोशिश करें, उसको मॉडरेशन में अपने आप को रखें, اور دوسری بات جو بہت ہی اچھا پوائنٹ تھا خلیق صاحب کا, بزی رہنا, یہ میں نے خود ان کی لائف میں آبزرو کیا ہے. وہ پرماننٹ صبح سویرے 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 سے بھی سویرے جب اٹھتے ہیں تو اس کے بعد وہ سارا دن بہت بزی رہتے ہیں, اور یہ ایک ایسی چیز ہے. اور ہمارے لوگ جو ہیں نا, ہم صرف فارغ ہونے کے لیے, ہمیں موت پڑی ہوتی کس طرح ہم فارغ ہو جائیں. فارغ ہوں گے تو پھر ہمیں, کیونکہ ہم نے کبھی دماغ کو ٹرین تو کیا نہیں, دماغ ہمارا مسل کی طرح تو کام کر نہیں رہا جو کہ ہماری اچھائی کے لیے سوچے یا وہ بہتری کرے, تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم دماغ کو استعمال کیسے کریں گے جب ہم فارغ ہوں گے. تو اگر آپ کا وہ دماغ ہے جو گنجل بناتا ہے سوچوں کے, تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کا فوٹے نہیں ہے, آپ کا اسٹرانگ سوٹ نہیں ہے, تو کچھ اور ضرور ہوگا. وہ کچھ بزنس ہو سکتا ہے, کوئی آپ کا کوئی ہابی ہو سکتی ہے, آپ کا کوئی بھی اچھائی کا کام جو ہے جس میں آپ کو انٹرنسک یا ایکسٹرنسک ریوارڈ آپ کو مل رہا ہے, تو اس پہ پھر بندہ دھیان دے. لیکن رہنا بزی ہے, کیونکہ میں نے سال ڈیڑھ یہ بھی کر کے دیکھا ہے کہ بزی نہ رہ کے بھی میں نے دیکھا ہے, لیکن اس سے اسٹریس جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے. سو میرا خیال ہے ایک بیلنس کریٹ کرنے سے, ایکولیبریم میں زندگی کو رکھنے سے چیزیں بہت بہتر ہوتی ہیں. آج ہماری ایک بہت پرانی لسنر ہے جی, تقریباً 5 سال سے وہ ہمیں سن رہی ہیں, اور انہوں نے کہا تھا جی میں نے اس سے پہلے بھی اسٹریس مینجمنٹ کے آزاد صاحب آپ کے شو سنے تھے, لیکن ہم ٹو دا پوائنٹ چیزوں سے نا, ہم لوگ جتنا مرضی آپ اس کو کر لیں لیکن آپ ٹو دا پوائنٹ چیزوں سے پھر ہٹ جاتے ہیں. تو آپ کائنڈلی صرف ہماری گائیڈنس کے لیے, ینگ ہیں وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں, تو انہوں نے کہا صرف ہماری گائیڈنس کے لیے اگر آپ بیسک چیزیں جو کہ اسٹریس کو مینج کرنے کے لیے, جو آپ نے اپنی زندگی کے جو اسٹریس کیسے مینج کی, اگر آپ ہمیں وہ بتا دیں تو یہ بڑا احسان ہوگا. احسان کیا ہوگا جی, ایسی تو کوئی بات ہی نہیں, وہی پوائنٹ بتانے بیٹھیں. یہ بریک ایک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اور پھر ٹو دا پوائنٹ اسٹریس کے اوپر. ابھی تک جو ہم نے باتیں کی نا, تو کچھ مسئلے بیان ہوئے, کچھ پوائنٹس بھی اس کے اندر سے نکلے, لیکن میں پوائنٹس جو ہیں وہ ساتھ ساتھ میں کاغذ پنسل لے کے, تو جو پوائنٹس میں ابھی میرے ذہن میں آتے ہیں میں وہ بتا دیتا ہوں, باقی ہو سکتا ہے اگر ٹائم, تو کیونکہ یہ ٹاپک ہماری زندگی سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. اصل میں ہمارے مسئلے جو ہیں نا, بہت زیادہ ہم جانتے ہی نہیں اپنے آپ کو. زیادہ تر ہمارے جو ہمیں چیزیں سٹریسڈ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں, انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم اپنی زندگی کے فیصلے بھی کر لیتے ہیں, اور پھر ساری زندگی وہ تکلیف جھیلتے رہتے ہیں. تو اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سٹریس کو کیسے مینج کیا جائے. ہم نے یہ نہیں کہا سٹریس الیمینیٹ ہو جائے گا, اٹس امپاسبل, لیکن سٹریس مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے. سٹریس کو مینج کرنا ہے ہم نے, جیسے پیسے کو مینج کرنا ہے, جیسے صحت کو مینج کرنا ہے, جیسے ہیلتھ کو مینج کرنا ہے. ہر چیز کو مینج کر سکتے ہیں آپ, کیونکہ تھوڑا سا وقت ہے, اس میں ہار جیت بھی نہیں ہے, مینج کرنا ہے صرف اس وقت, اس ٹائم, اس انرجی کو جو آپ کے پاس. نمبر ہے اسٹوڈیو کا 9725019390. ہمارے کچھ بہت ہی پیارے پیارے بہن بھائیوں نے جن کے پروڈکٹس اینڈ سروسز جو ہیں جی, وہ آپ لوگ یوز کرتے ہیں, اور اگر نہیں کرتے تو آپ لوگ ظلم کرتے ہیں, اسپیشلی اگر آپ ڈیلس میں رہتے ہیں, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا رابطہ جو ہے اتنے سالوں سے جڑا ہوا ہے. اس میں آج کل سر فہرست ہیں جی, کرسپی کرنچی چکن, جو کہ اٹ از ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس ان دا نیشن, ناؤ اوپن آن اسٹوری روڈ ان ارونگ. یہ میری گارنٹی ہے آپ کو, آپ کو, آپ کے بچوں کو, کسی بھی ٹیسٹ برڈ سے تعلق رکھتے ہوں آپ, کسی بھی کمیونٹی سے آپ تعلق رکھتے ہوں, آپ کے بچے اسپیشلی جو ہیں, ان کو اگر مزہ نہیں آیا تو آپ مجھے کال کیجیے گا, پیسے میں واپس کر دوں گا آپ کے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے مزے کا, جو بھی کیجن سٹائل ہونے کی وجہ سے ہے یا جو بھی اس کا ریزن ہے, میں پاکستان سے جب یہاں پہ آیا تو وہاں پہ مجھے کے ایف سی بہت پسند تھا, ان کا زنگر برگر اور باقی چیزیں. سو ٹرائی ضرور کیجیے گا, چکن ٹینڈرز ان کے, چکن ونگس, اس کے علاوہ کیجن سویٹ اینڈ ساور اینڈ کرسپی اسٹائل, ہر چیز, جمبلایاز اور ہنی بٹر بسکٹس. میں میٹھا کھاتا نہیں ہوں لیکن ہنی بٹر بسکٹ جو ہے وہ اتنا کمال ہے کہ وہ چھوڑا نہیں جا سکتا, اور جہاں پہ بھی ہو میں ایک آدھ ضرور کھا لیتا ہوں. سو ٹرائی کر لیں ایک دفعہ, کوئی ٹرانس فیٹ نہیں ہے, کوئی بیف, کوئی پوک پروڈکٹس نہیں یوز ہوتی ہے وہاں پہ, 100% حلال میٹ ہے ان کا سارا, اور یہ ایک امیریکن چین ہے جنہوں نے حلال فوڈ والے جو مسلم لوگ ہیں ان کو سامنے رکھ کے یہ حلال جو ہے وہ اپنا ساری ریسیپیز رکھی ہیں. دے آل یوز کنولا آئل, اور ٹرائی کیجیے آپ لوگ فاسٹ فوڈ کے طور پہ بھی. ویسے بھی آپ لوگ جا کے اپنا کھانا وانا فیملی کو بھی ایک دفعہ لے کے جائیں, کیٹرنگ سروسز بھی وہ کراتے ہیں, تو پھر آپ لوگوں کی جو گھر کی جو پارٹیز وغیرہ ہیں ان کو بھی رنگدار کر دیں گے. کمپلیٹ مینیو ان کا crispycrunchy.com پہ وہ آپ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں. ان کی لوکیشن ہے اسٹوری روڈ, بالکل جو پہلے آپ کو نظر آتا تھا ڈیرا گرل, اور اب جو ہے سعید صاحب کو کروٹ جنت نصیب کرے جی, بڑی کوشش کی انہوں نے ڈیرا گرل کے لیے, تو ڈیرا گرل کے بالکل ساتھ اسی پارکنگ, اسی مارکیٹ میں جو اسٹرپ مال سا بنا ہوا ہے وہاں پر ہی آپ کو کرسپی کرنچی چکن مل جائے گا. اس کے علاوہ اولڈ ٹائم کریمری, اولڈ ٹاؤن کریمری, مجھے تو یہ اولڈ ٹائم لگتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کب سے اس کی تعریفیں کرتے آ رہے ہیں. اٹ ہیز دا بیسٹ اینڈ دا موسٹ ڈیلیشیس ہوم میڈ آئس کریمس ان ٹاؤن, مور دین 50 فیوریٹ نیشنل انٹرنیشنل فلیورس. تو آپ لوگ ایک دفعہ بچوں کو لے کے جائیں, ٹرائی کریں. اولڈ ٹاؤن کریمری ڈاٹ کام ان کی ویب سائٹ ہے. لوکیشن ہے اسپرنگ کریک اور کوئٹ کا انٹرسیکشن پلینو میں. 15% آف ملے گا اگر آپ ریڈیو آزاد کا نام مینشن کرتے ہیں. یو کین کال دیم آلسو ایٹ 972-673-0285. اور اس کے علاوہ اولڈ ٹاؤن فوڈ فیکٹری بھی ان کی ہے, اس میں بھی آپ لوگ اپنا کمال قسم کا کھانا ان کا ٹرائی کیجیے. اور رمضان بھی آ رہا ہے تو آپ کو باکسز میں بھی مل جائے گی جی افطاری. سو ٹیکسس کنگ ارونگ ہے, ٹیکسس کنگ پلینو ہے, ارونگ آر آف سائنس, سمر کیمپس ہیں, لا آفس آف اینڈرو نکلز, جمیز برگر. اب آتے ہیں جی اسٹریس مینجمنٹ کے اس پروگرام کی طرف ہماری ان سسٹروں کے لیے جو کہ پرسنل لائف ایکسپیرینسز سے چاہتی ہیں جی, کہ جو کچھ آزاد سب کچھ آسانی سے میں آپ کو بتا دوں جتنے میں سے ہم گزرے ہیں. ٹھیک ہے جی, سٹریس کو اپنی زندگی سے کم کرنے کے لیے اور جتنا ہے اس کو مینج کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو سب سے اہم ہے اور جس کا ہماری زندگی میں دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے, وہ ہے جی ہماری اپنی پرسنل کوئی فلسفی نہیں ہے. ہر آدمی کو میں دیکھتا ہوں بھیڑ کی طرح پیدا ہوتا ہے, بھیڑ کی طرح سر نیچے کر کے چلتا ہے اور بھیڑی کی طرح اس دنیا سے نکل جاتا ہے یا قربان ہو جاتا ہے. انسان بھیڑ بکریوں کے لیے نہیں بنا, کی طرح نہیں بنا. انسان بنا ہے اپنی ویژن کے ساتھ, اپنی انٹلیکچوئل ابلٹیز کے ساتھ, اپنی سوچ کے ساتھ, اپنی فکر کے ساتھ. رب سے پہچانا جاتا ہے انسان اور انسان پہچانا جاتا ہے رب سے. اتنا کلوز ہیں ہم لوگ اور ہمارے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا ہے, ہمارے لیے مسخر کیا گیا ہے. ہم اس کے اوپر جو ہے نا ٹرائمفنٹ ہونا ہے, فاتح ہونا ہے ہم کو ان تمام چیزوں کے اوپر. تو پرسنل ایک فلسفی ہوگی ہماری. لوگوں کی بنائی ہوئی فلسفیز ہماری فلسفیز نہیں ہیں. ہم میں وہ, ہم اس زمانے میں نہیں پیدا ہو رہے, ہم اس انوائرمنٹ میں نہیں پیدا ہو رہے. ہمارے چیلنجز باقی بہت سارے لوگوں سے ڈفرینٹ ہیں. تو کوئی بھی بمپر اسٹیکر فلسفی یا کوئی بھی نیڈل پوائنٹ ایکسپریشن جو ہے وہ میری ذات کو سوٹ نہیں کر سکتا ایز اٹ از. تھوڑا سا ٹویک اگر اس کو کریں گے ہم تو شاید وہ ایڈجسٹ ہو جائے. من ون کوئی بھی چیز میرے پہ لاگو نہیں ہوتی. میں نے سب کر کے دیکھا اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے, سو پہلے تو آپ کی زندگی کی ایک فلسفی ہونی چاہیے. کہ فلسفی گریک ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے جی لو فور وزڈم. تو لو فور وزڈم آپ اسی سے اگر ہم سمجھ جائیں کہ میری زندگی کی فلسفی کیا ہے. جب رب نے یہ کہہ دیا تم میں سے بہترین انسان وہ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے, تو میری زندگی کی فلسفی ہے آسانی پیدا کروں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. کیونکہ لمیٹڈ ٹائم کے اندر 60-70 ایئرس کی میری لائف ہے, اس میں میرے پاس ایک پرٹیکولر اماؤنٹ آف, ایک لمیٹڈ اماؤنٹ آف انرجی ہے, لمیٹڈ اماؤنٹ آف ریسورسز ہیں اور لمیٹڈ اماؤنٹ آف ٹائم ہے. میں اس دنیا کو فتح نہیں کر سکتا, میں اس دنیا کو بدل نہیں سکتا, میں اس دنیا کے لیے کوئی بہت خاص چیز نہیں کر سکتا, لیکن میں اپنی بساط کے حساب سے میرا اس دنیا کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ میں آسانی پیدا کر لوں. مجھے بچپن میں جو چیزیں سمجھ نہیں آتی تھیں ان سبجیکٹس کو, لوگوں کی باتوں کو, چیزوں کو, میں نے جان اپنی آسان کرنے کے لیے ان کو کنڈینس کر کے, کمپارٹمنٹلائز کر کے آسان کرنے کی کوشش کی. سو میری اب زندگی کی فلسفی ہے میں اپنی زندگی کو عذاب نہیں بناؤں گا, نہ ہی کسی اور کو بنانے دوں گا, چاہے وہ کوئی بھی ہے, کہیں بھی ہے, کیسا بھی ہے. کیونکہ اگر اینڈ پہ حساب میں نے دینا ہے تو زندگی جیوں گا بھی میں اپنی ٹرمز کے اوپر. کیونکہ اگر میں حساب دینے جاؤں اور جیوں میں معاشرے کی زندگی یا لوگوں کی زندگی یا لوگ کیا چاہتے ہیں کہ زندگی یا لوگ مجھ سے کیا فرماتے ہیں کہ زندگی, تو میں تو پکا فیل ہو جاؤں گا اس میں, امتحان میں. اور کم از کم اپنی عزت رکھنے کی خاطر, اپنی پیغمبر کی اپنی نظروں میں اور رب کی نظر میں عزت رکھنے کی خاطر, میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ میں سمجھ جاؤں اتنا کہ میں زندگی کو عذاب ہونے سے یا دوسروں کی زندگی میری وجہ سے عذاب ہو جائے اس سے بچا لوں اپنے آپ کو. تو یہ میری فلسفی ہے لائف کی, آپ کی بھی ہوگی. خود بنائیے اور پھر اس کو فالو کیجیے. فلسفی بنانے کے بعد ایک سیلف امیج آپ بنائیں اپنا, اپنا ایک سیلف امیج جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی عزت ہو, جو امیج آپ نے بنایا ہے تو اس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو. تو اس کا راستہ ہے ایک دوسروں کی عزت کرنا, دوسروں کی ماں بہنوں کی عزت کرنا, دوسروں کے مذہب کی عزت کرنا, دوسروں کی سوچ فکر سمجھ کی عزت کرنا. ضروری نہیں کہ آپ 100% جو ہے وہ ان کے حساب سے تو نہیں چل رہے آپ, لیکن وہ ایسا سوچتے ہیں کرتے ہیں سمجھتے ہیں, ان کی فکر ہے وہ ٹھیک ہے, جو بھی اپنے حساب سے ہیں وہ, بس یہی ہے. اگر آپ دوسروں کو بے عزت کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ کی بھی بے عزتی ہی ہوگی نا, پھول تو نہیں چڑھائیں گے لوگ آپ کو. پھر آپ کا سیلف امیج یہ ہے کہ آپ کسی سے مانگنا کچھ نہیں چاہتے, تو کیا کریں گے آپ؟ حاصل کریں گے, علم کے ذریعے حاصل کریں گے, مشقت کے ذریعے, سٹرگل کے ذریعے, سٹرائیونگ کے ذریعے آپ حاصل کریں گے. اس سے آپ کی اپنی نظر میں بھی عزت ہوگی, دنیا میں بھی عزت ہوگی آپ کی. تو سیلف امیج کیا ہے؟ کیا آپ ہپوکریٹ بننا چاہتے ہیں, یا گڈ کی فورسز میں جانا چاہتے ہیں, یا آپ ایول کی فورس میں جانا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کا سیلف امیج کو ڈیفائن کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ دو چیزیں پہلے ہیں, یہ بیسک چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اپنا سواٹ انالیسز کریں کہ آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں, آپ کی ویکنیسز کیا ہیں. ابھی کوئی سوچ رہا ہوگا اسٹرینتھس کیا ہوتی ہیں, کمیونیکیشن اسکل ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے, آپ کی لکس ایک اسٹرینتھ ہوتی ہیں, آپ کا ایک جو اپ برنگنگ ہے وہ اسٹرینتھ ہوتی ہے, آپ کی ڈگری جو ہے وہ ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے جو بھی آپ نے حاصل کی, آپ کا ایکسپیرینس ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے. ویکنیس کوئی پوچھے گا کیا ہوتی ہیں, کیا ہوتی ہیں ویکنیسز آپ کے خیال سے؟ کوئی وائس, کوئی ایسی بری عادت جو آپ کو پڑ گئی ہے وہ آپ کی ویکنیس ہوتی ہے, کوئی ایسی کنڈیشننگ جو غلطی سے آپ کے اندر آ گئی ہے جو اچھی نہیں ہے, جو معاشرے نے آپ کو دے دی ہے, جہاں بڑے ہو رہے تھے انہوں نے دے دی ہے, بدبخت لوگوں نے دے دی ہے آپ کو, اس سے وہ آپ کی ویکنیس ہے. ایک غلط انوائرمنٹ میں آپ چلے گئے ہیں, وہ آپ کی ویکنیس ہے. آپ مچھلی اور پانی سے باہر پھینک دیا آپ کو کسی نے نکال کے, یو ہیو ٹو گیٹ بیک ٹو دا واٹر ود نو ود آؤٹ اینی ایکسکیوز, بیکاز دس از ہاؤ یو سروائیو, دس از ہاؤ یو کین اونلی سروائیو. ٹھیک ہو گیا. اپرچونٹیز کیا ہیں, جو آپ کی ابلٹیز ہیں, جو آپ کی ویکنیسز ہیں, ان کو سامنے رکھ کر آپ کے پاس زندگی میں اپرچونٹیز کیا ہیں اس کو فگر آؤٹ کرنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد تھریٹس کیا ہیں آپ کو, کون آپ کے گفٹ کو کس سے خطرہ ہے. انسان کے گفٹ کو سب سے بڑا خطرہ ہپوکریسی سے ہے, منافقت سے. پھر اس کو سب سے بڑا خطرہ ہے ایول کی, ڈارک کی فورسز سے, جو ہر وقت اس کو ارد گرد کور کرتی رہیں گی, اور وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. ولن فلم میں ہمیشہ اسٹرانگ ہوتا ہے, اس لیے مجھے کبھی وہ ولن نہیں پسند آیا جو روتا پٹتا رہتا ہے یا معافیا مانگتا رہتا ہے ہیرو سے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ایول ہیز ٹو بی اسٹرانگر, کیونکہ دنیا میں اس وقت آپ نے اپنی زندگی میں, میں جو دیکھ رہا ہوں 10-90 یا 80-20 کی ریشو چل رہی ہے, جو اگر میں سچ بولوں آپ سے تو لوگ بڑا کچھ کہیں گے 50-50 ہے, وہ کہتے ہیں اسی لیے پھر ان کی زندگیوں میں اوپر نیچے ہیں, کلیئرٹی میں نہیں بات کرتے ہم لوگ. سو دنیا میں سب سے بڑا ایک یہ بھی بڑا پرابلم ہے, کسی سیانے نے کہا تھا, دا ہول پرابلم ود دا ورلڈ از دیٹ فولز اینڈ فینیٹکس آر آلویز سو سرٹن آف دیم سیلفز بٹ وائز ار پیپل سو فل آف ڈاؤٹس. یہ لوگ جو کٹر ہیں اور جو بے وقوف ہیں, وہ اتنے کنفرمڈ ہیں اپنے آئیڈیاز کے اوپر کہ وہ ٹھیک ہیں, اور جو عقل مند لوگ ہیں وہ شکوک و شبہات سے بھرے پڑے ہیں. سو یہ پہلے تو یہ تین چیزیں کرنی پڑیں گی آپ کو. اس کے بعد ایک چیز آپ کو ماننی پڑے گی اور سمجھنی پڑے گی, اپنے اوپر فیتھ جو ہے, اس کو اپنے اوپر فیتھ لانے کے بہت سارے طریقے ہیں, لیکن سب سے آسان, سب سے آزمودہ اور صدیوں پرانا طریقہ جو ہے عقل مند آدمی وہ ہے جو دوسروں کے ایکسپیرینس سے بھی کچھ سیکھے اور اپنے ایکسپیرینس سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھے, وہ ہے ہمارا فیتھ. میں نے یہ محسوس کیا ہے, جب جب میرا ایمان کمزور ہوتا ہے رب کی ذات کے اوپر اور اپنے اوپر بہت مار پڑتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑی پریشانیاں آتی ہیں, بڑے سٹریس ہوتے ہیں. سو رب کے اوپر ایمان کر لینے سے بہت ساری چیزوں کی جو امید ہے, بہت ساری چیزوں کا جو سٹریس ہے وہ کم ہو جاتا ہے, اور پھر اپنے اوپر یقین تب آئے گا جب اوپر کی ساری چیزیں, فلسفی آف لائف سیٹلڈ ہے آپ کی, آپ کا سیلف امیج ٹھیک ہے, اور آپ کا سوٹ انالیسز 100% بروٹلی کریکٹ اور کلیئر ہے, تو اپنے اوپر بھی فیتھ بندے کو آ جائے گا. ठीक है जी। उसके बाद एक और चीज है जो बड़ी जरूरी है स्ट्रेस को कम करने के लिए, वो है अच्छी याददाश्त। लोग बड़ी जल्दी आपकी अच्छाइयां भूल जाते हैं। लोग आज आपको कहेंगे आपसे बेहतर कोई नहीं, और कल कहेंगे आप दुनिया के सबसे बुरे आदमी। लोग कहेंगे जी हमने आपसे बहुत सीखा, जब आप हमारे उस्ताद हैं। लोग लानत बाद में भेजेंगे, कहेंगे ऐसा होता उस्ताद। लोग आपको पलकों पर बिठाएंगे और फिर उसके बाद आपको लोग ऊपर से नीचे दे के मारेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। लोग एक जमाने में ऐसा भी आएगा और आया था और आता रहेगा लोगों की जिंदगियों में, जो लोगों को सजदा करना चाहते थे, लेकिन वही लोग उनकी शक्ल भी बाद में नहीं देखना चाहते थे और मिलना भी नहीं चाहते थे। सो ये दुनिया, ये पब्लिक ओपिनियन जो है ना, बड़ा फिकल है। लोगों को कुछ नहीं पता आपके बारे में, ना कभी उन्हें पता चलेगा, ना वो कभी आपको जान पाएंगे या समझ पाएंगे। इसलिए ये जो रोना है ना, ये परमानेंट रोना है कि जी दुनिया का, दुनिया हमें नहीं पहचानेगी, ये लोग हमारे साथ ऐसे करेंगे या नहीं करेंगे। सो ये आपको समझना है कि इससे आपने अपनी जान छुड़ानी होगी। आपको खुद इन सारी चीज़ों की समझ होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आपको स्ट्रेस देती हैं। ये सब जानने के बाद अब आते हैं बेसिक चीज़ों की तरफ, जो सबसे, ये सब जानने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। वो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके इर्द गिर्द हमारी लाइफ जो है वो घूमती है, और जो ये रिजल्ट देती है कि आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी या बुरी। रिजल्ट्स आते हैं तीन चीज़ों से, आपकी हेल्थ कैसी है, हेल्थ, वेल्थ और आपकी फैमिली। ये तीन चीज़ें जो हैं ये हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम हैं। कुछ लोग जो जज्बाती ज़्यादा होते हैं, जिनके इमोशंस और बीमार किस्म की भी जिनकी जज्बातीत होती है, उनके पास बहुत सारे रीजंस होते हैं, आप उनसे लड़ नहीं सकते, वो कहते हैं कि फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से वो गलत कहते हैं, और उसका एक रीज़न है। मैंने फैमिलीज़ को, जिन लोगों ने फैमिलीज़ को सबसे आगे रखा, जब वो बूढ़े हुए या बीमार हुए तो उन्हीं फैमिलीज़ ने उनको धुतकारा। जब उनकी नौकरियां चली गईं तो वो जो सबको सपोर्ट करते थे, उनको किसी ने एक रुपया भी उधार नहीं दिया और उनको निकम्मा कहा। ठीक है, सो ये जब आप खुद ही किसी काबिल नहीं हैं तो फैमिली कहां से आई, फैमिली को कैसे सपोर्ट करेंगे आप। सो इसलिए दुनिया में सबसे जरूरी चीज, जब सांस के मरीज का सांस बंद होता है ना, उसको फैमिली नहीं याद आती। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब किसी को रातों को नींदें नहीं आती तो फैमिली भी कुछ नहीं कर पाती, दुनिया कुछ नहीं कर पाती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे नज़दीक, अगर इंसान सच बोले और क्लियर हेडेड हो, तो मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी हेल्थ, आपकी अपनी सेहत, जिसको हम कभी पैसे के पीछे गंवा देते हैं और फिर सारा पैसा उस सेहत के ऊपर लगा देते हैं। कभी उसको हम लोगों की भलाई के ऊपर लगा देते हैं और अपनी खुद तकलीफ में हम लोग मर जाते हैं और फिर कोई पूछने वाला हमको नहीं होता। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी हेल्थ। सो उस हेल्थ को, जितनी लंबी आपकी सेहत अच्छी होगी, उतनी लंबी रेस के घोड़े हैं आप, उतनी लंबी इज्जत होगी आपकी, उतना लंबा आप अपने आप को सपोर्ट कर पाएंगे, उतना लंबा आप लोगों के मोहताज नहीं होंगे। यू विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर ह्यूमन बींग्स। The less dependent you are on others, the more celebrated will you be. तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको हमने समझना है। और इसके बाद एक कॉल है, कॉल आगे लेते हैं और फिर मैं आगे पॉइंट्स जो है ना साथ कवर करता जाता हूँ। हेलो, यू ऑन द एयर।
हेलो
जी मैम।
स्ट्रेस मैनेजमेंट।
हाँ,
तो I've missed most, you know, earlier part of the show, like, and I thought I'll give a couple of tips, because these days,
please.
I was also a little bit stressed, and I think everybody these days is a little stressed.
Mm-hmm.
So what I have been doing lately is breaking down the bigger projects,
mm-hmm.
the whole into smaller ones, which you can achieve on daily basis. Like, you know, if you have a big goal that you want to achieve at the, you know, I don't know, at the end of the month or at the end of the quarter, then you can break it down to smaller ones that you can do a little bit at a time every day, so every week,
mm-hmm.
and then put a tick mark on it. So that kind of keeps you motivated and you feel like you're moving.
Bilkul, organized.
Making some progress, yeah.
Mm-hmm.
And so you know that if you keep doing this, you will achieve it. achievable. So the stress becomes a little less. Then you can sometimes I also say to myself, it's okay. I mean, don't have to do everything on my to-do list. So sometimes you have to go a little easy on yourself.
Let go also a few things.
Mm-hmm. Yeah. So that's another one. And on the spiritual side, I would say, you know, meditation helps.
Mm-hmm.
And meditate, you know, try to meditate, you know, in the morning or whenever you get time.
Very important. Mm-hmm.
And second thing I do is I tell myself I did my best, and of course you have to do your best effort, and you put in all your effort and do the best, and then at the end of the day you can say you did your best. Abhi jo uska result aane wala hoga, that will be depending on your beliefs, on, you know, depending, leave it to God, yeah, to divine, divine entity,
connection,
God, you know. And that's all you can do basically, because it comes down to your again controllable and uncontrollable factors, because the results are not under your control. So.
Mm-hmm. Nice of you, ma'am. Thank you very much. And the part that you missed for the show, you can hear it tomorrow also, because there are a lot of such points, and your points are very good. In points ko bhi aage chal ke hum saath saath inke upar bhi baat karte rahenge. But nice of you, thank you very much. A very productive call, ji. So, sabse important cheez meri nazar mein, mera kaam hai apni nazar se bataun, aap apni nazar mein dekhein aur usko khud hi prioritize kar lein. Sabse important cheez hai health. Health, aur uske baad important hai family, aur uske baad important hai, ye bhi debatable aap usko bana sakte hain, lekin paisa jo hai wo bhi ek had tak jo hai इम्पॉर्टेंट है. तो सेहत, पैसा, फैमिली, ये तीन चीज़ें, और इसको अगर हम, इसके ऊपर अगर हम अपना ध्यान और फोकस रखें तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो सकती है, हमारा स्ट्रेस जो है वो मैनेजेबल हो सकता है किसी हद तक. अब और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से ना हमारा, हमने माइंड को समझना है. माइंड बस गेम में खेलता रहता है. मेरा ज़्यादातर टाइम अपने माइंड को कि गेम्स जो भी इसके अंदर लोड हो चुका है बाय डिफ़ॉल्ट, कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर नेचुरल फिनोमिनन के जरिए जो कॉमन सेंस है, और कुछ चीज़ें जब हम बड़े हो रहे तो बहुत सारी नेगेटिव इसके अंदर चली गई हैं मेरे दिमाग में, और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं इसके अंदर. सो वो डिफरेंट डिफरेंट मेरे मुझे कर्व बॉल्स वगैरह कराता रहता है. अब उस कर्व बॉल को मेरी, वो एक थॉट है, मेर थॉट है, उससे मैं बुरा नहीं हो जाता, अच्छा नहीं हो जाता, जब तक मैं वो उस थॉट पर अमल नहीं करूँगा कि वो बुरी है तो उसके रिजल्ट्स बुरे निकलेंगे, अगर अच्छी है तो अच्छा काम किया तो अच्छे रिजल्ट निकलेंगे. तो आपने उसमें से चूज करना है. दिमाग आपको गवर्न नहीं करेगा, आप दिमाग को गवर्न करेंगे, ये समझना है. हर वो चीज़ जो अच्छी गुलाम है वो बहुत अच्छी मास्टर नहीं बन सकती. वो मास्टर फिर ना, जब कहते हैं ना मनी इज अ गुड स्लेव एंड अ वेरी बैड मास्टर. सो अगर आपके काबू में है तो चीज़ें ठीक, क्यों काबू हमेशा आपका रहेगा. सो आपको लग रहा होगा यार अगर आप खुद ही हैं तो दिमाग भी तो आपके अंदर ही लगा हुआ है, तो आप ये कैसे कह रहे हैं. वो जो अंदर लगा हुआ है उसमें केमिकल्स, उसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं. मैं जिस चीज़ को कंट्रोल करने को कह रहा हूँ वो माइंड है, माइंडसेट. आप अपने दिमाग से जो रब ने आपको दिया है उससे आप अपने माइंड को कंट्रोल करें, जिसके अंदर बहुत, ब्रेन के अंदर कमजोरी नहीं है. वो तो जब तक उसके केमिकल्स अपना ठीक काम कर रहे हैं, केमिकल लोचा नहीं है, तो ब्रेन परफेक्ट है. सो ब्रेन में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम माइंड में है, माइंडसेट में है. और उसमें बहुत सारी चीज़ें गलती से, अननोइंगली, या कुछ जानबूझकर, कुछ मजबूरी के तहत, कुछ और रीजंस की वजह से हमने डाल दी है. उसको हमने समझना है, और वो कर्व बॉल जो हमें कराता है उसमें, ये कर्व बॉल है कि यूर लूजर. तब उसके लिए हमने क्या कहा हुआ, क्या करना है हमने, जब भी वो कहे कि यूर अ लूजर, नथिंग इज गोन कम आउट ऑफ ऑल दिस, दिस इज अ फ्यूटाइल एफर्ट, दिस इज दिस एंड दिस इज दैट, तो क्या करेंगे आप? गुड मेमोरी का हथियार. आप कहेंगे जी नहीं, मैंने फलां वक्त में ये किया था, फलां वक्त में ये किया था, आई वॉज अप्रिशिएटेड फॉर दिस, आई गॉट एक्नॉलेजमेंट फॉर दिस, आई मेड दिस मच. यू हैव टू स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग. तो कर्व बॉल खुद ब खुद उसको छक्का लग जाएगा आपके, आपका जो माइंड का कर्व बॉल है ना, आपका ब्रेन उसको छक्का लगा देता है. तो बॉल बाउंड्री से बाहर. तो इसी तरह हर चीज का एक काउंटर आपने रखना है अपने लिए, ठीक है. जैसे ये बात मैंने एक बुजुर्ग, पुरानी बात है, जब मैं रिलेट करता हूँ ना चीज़ें तो रिलेट हो जाती हैं, वो 2+2 हो जाता है. तो खान जी ने मुझे एक किस्सा सुनाया था. कहते थे कि अल्लाह वाला आदमी था, वो अपने खलीक साहब टाइप आदमी होगा और वो अपनी ज़िंदगी बड़े मज़े से गुजार रहा था, तो शैतान एक दफ़ा उसके सामने आ जाता है और उसे कहते हैं कि तुम बड़े आराम से सो तो रहे हो, तुमने कल का कोई बंदोबस्त वगैरह किया नहीं, तुम अल्लाह पे तवक्कुल पे बैठ के हो, तो कल क्या करोगे तुम? तो उसने कहा, बड़े सियाने बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए मैंने अल्लाह तवक्कुल की है, शॉर्ट टर्म के लिए मैंने पैसे जो है अपने सरहाने के नीचे रखे हुए हैं। तो ये शैतान की कर्व बॉल जो थी ना, जो बुराई का जो आता है आपके दिमाग से, माइंड से, तो उसको कर्व बॉल को इसको कहते हैं छक्का लगाना, कि भाई मैंने वो लॉन्ग टर्म में रब पे रखा हुआ है, शॉर्ट टर्म तो मुझे खुदा ने इतनी हिकमत दी है, मैं खुद ही बंदोबस्त करता हूँ, अच्छे खासे मेरे हाथ पैर काम करते हैं, मैंने पैसे जमा कर रखे हैं। सो ये समझना ज़रूरी है। उसके बाद नीड्स एंड वॉन्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारी वॉन्ट्स हैं वो हमारी नीड्स नहीं है, और हम लोग नीड्स पे जी सकते हैं। अगर हमारी नीड्स हमारे काबू में है तो स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। आपके खर्चे अगर आपके कंट्रोल में हैं और आपका जितना पैसा आपको चाहिए वो आपके कंट्रोल में है और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी आपके इख्तियार में, तो स्ट्रेस बहुत कम होगा आपको। ये समझना ज़रूरी है। और ये कैसे होगा, नीड्स पे हम कैसे रहेंगे? मैंने ये बात अपने फादर से सीखी, खलीक साहब से सीखी, हर दुनिया के बड़े आदमी से, मैंने हुजूर पाक से सीखी, मैंने हज़रत अली से सीखी, बहुत सारे और लोगों से सीखी कि नीड के ऊपर रहने से। वो फिल्म सिंघम से सीखी मैंने, वो फिल्म सिंघम में वो कहते हैं ना कि मेरी ज़रूरतें कम हैं इसलिए मेरे ज़मीर में दम है, तो ये सिंघम साहब से भी हमने सीखी। तो लोगों ने सिर्फ वो सटकी वाला ही सीखा है, वो जो दबाव के साथ वो करके लोगों को कुटने शुरू कर देता है वो, लेकिन असल बात उसमें ये थी पूरी फिल्म के अंदर कि मेरी ज़रूरतें कम हैं इसलिए मेरे ज़मीर में दम है। सो ये एक और बहुत, और वो ज़रूरतें कम होने का मतलब हमें क्या करना होगा, सिंप्लिसिटी, सादगी इख्तियार करनी होगी हमने। आप जितने बड़े लोगों को जानते हैं, अब भी आप उनको देखते हैं या मिलते हैं, आप उनसे इंटरव्यू लेते हैं, बातें करते हैं, आप आखिर में कहते हैं यार बड़ा सादा सा आदमी है, इसीलिए वो है जो है और उसको इतनी इज्जत मोहब्बत मिली है, बिकॉज सिंप्लिसिटी के बारे में किसी सियाने ने कहा था, इट शार्पन्स द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट मेक्स यू फ्री फ्रॉम ऑल पेन्स, इट शोज यू ग्रेटनेस ऑफ लाइफ। तो ये सिंप्लिसिटी जो है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करें, वरना वॉन्ट्स की कोई एंड नहीं है। गाड़ी डैलस के हालात के हिसाब से, ट्रैफिक और इन्वायरमेंट के हिसाब से एक नेसेसिटी है, एक नीड है, बट लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ी खरीद लेना वो एक वॉन्ट है। अफोर्डेबल गाड़ी खरीदना इज अ नीड प्लस अ बिट ऑफ वॉन्ट, फाइन दरमियान में रख लें, मैनर अभी की बात कर रहे हैं ना, पहले बेसिक नीड्स पूरी करें, उसके बाद अपने चादर बड़ी है तो थोड़े से पांव फैला लें, अपार्टमेंट थोड़ा बेहतर कर लें, घर थोड़ा बेहतर, जो भी करना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल में। ये नहीं कि अपना गला काट के और अपने आप को मुसीबत में डाल के लोगों को दिखाने के लिए एक चीज़ ले रहे हैं और उसके फिर पैसे भरते रहें और फिर हमें स्ट्रेस हो जाए। सो ये नीड्स एंड वॉन्ट्स का फंडा जो है इसको भी हमने समझना है। और काउंट योर ब्लेसिंग्स, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरे, जब भी आपको तकलीफ हो, परेशानी हो या मसला हो या स्ट्रेस बढ़े, तो आपने ये फिगर आउट करना है कि बाकी जो लोग हैं जिनको आप जानते हैं, आप इंटरनेट के ऊपर आप दुनिया की सफरिंग देख सकते हैं, टीवी आप देखते हैं उसमें दुनिया की सफरिंग देख सकते हैं, न्यूज़ में आप दुनिया की सफरिंग देख सकते हैं, तो आप अपने आप को उनके साथ हमेशा कंपेयर करें एंड देन शुक्रगुजार हों, थैंकफुल हों। थैंकफुलनेस जो है ये आपका स्ट्रेस लेवल भी बहुत कम कर देती है। कोई है हमारे साथ रही रौंदी है? हेलो
अभी आजाद भाई।
सर सर सर,
एक बात याद आ गई है।
जी सर,
हम लोग जो मैट्रिक में थे, इंटर में आए, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ाया जाता था, उसको तो कुछ भी कक समझ में नहीं आता
सर,
लेकिन फिर पता चला कि भाई स्ट्रेस उसमें डिफाइन किया गया है
जी,
कि वो फोर्स जो है वो उस एरिया में होता है और स्ट्रेन होता है डिफॉर्मेशन ऑफ दैट सॉलिड स्टेट। लेकिन उन लोगों ने स्ट्रेस कम करने या खत्म करने के अजीब अजीब तरीके इख्तियार किए हुए हैं, वो तो आप भी पता है, वो लिखा हुआ भी किताबों में। लेकिन मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि मुझे एक कैफी आजमी साहब का एक शेर याद आ गया है
सर,
कि जो स्ट्रेस की बहुत बड़ी वजह भी हो सकता है, कि आदमी की ख्वाहिशें हैं बेशुमार, आदमी की ख्वाहिशें हैं बेशुमार, दो गज जमीन चाहिए दो गज कफन के बाद।
बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक।
बस याद आ गया, हमने कहा चलिए आपको।
और सर उस पर ना मोहसिन नकवी साहब जो कहते हैं ना, उन्होंने भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया इंसान के, वो कहते हैं कि रिज्क मलबूस मकान सांस मर्ज कर्ज दवा, मुनकसिम हो गया इंसान इन्हीं अफकार के बीच। नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। मिस पौलाक साहब थे जी हमारे पास ऑल द वे फ्रॉम न्यू जर्सी, थैंक यू वेरी मच सर, ब्यूटीफुल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द शो। अब ये जो कुछ वर्ड शायरी में ना थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन इतने भी मुश्किल नहीं होते कि मतलब जिसको थोड़ी बहुत उर्दू की समझ हो उसको ना समझ आ सके। सो रिस्क, ये जो जिसको हम लाइवलीहुड कहते हैं, मलबूस लिबास जो हमारे कपड़े होते हैं, मकान घर जो बेसिक नीड्स हैं, उसके बाद सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा, मर्ज बीमारी कोई लग जाती है तो, कर्ज लोन और दवा मेडिसिन, मुनकसिम हो गया तकसीम हो गया डिस्ट्रीब्यूट हो गया इंसान इन्हीं सोचों और फिक्रों के बीच में। सो ये एक बहुत बड़ी जिंदगी की हकीकत है जी। सो लेकिन इन्हीं हकीकतों, यही तो फिर इंसान है, यही तो फिर इम्तिहान है, और यही तो फिर अफजल और किसी ने पूछा था ना एक दफ़ा कि जी वो पैगंबर जो वो, उसने सवाल भी एक आया था कि मर्द ही सारे पैगंबर होते हैं, लेडी का औरत कभी क्यों पैगंबर नहीं हो सकी। तो वो तो खैर एक लंबी डिबेट है, लेकिन लोग समझते हैं कि पैगंबर होना जो है वो को बहुत बड़ी फजीलत है, हालांकि ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। तो ये जिंदगी की जो हमें अशरफुल मखलूकात का जो हमें ठप्पा लगा है कि बेस्ट ऑफ ऑल द क्रिएशन जो है वो वैसे नहीं लगा, उसकी अब प्राइस पे करनी पड़ेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू गेट व्हाट यू पे फॉर। तब उसकी पेमेंट जो है वो इंसान जो है वो रिस्क मलबूस मकान सांस मर्ज कर्ज दवा से दे रहा है। नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। 972-501-9390। मेरा ख्याल है प्रोग्राम की खुश्क ज्यादा ना हो जाए, हालांकि मिस बॉल हक साहब तो आए थे, लेकिन जब हम लोग अपने काम सही नहीं कर पाते तो फिर हम अपने आप को जान नहीं पाते, फिर इंसान अपने आप से पूछता रहता है जाने ऐसा क्यों हो रहा है, जाने वैसा क्यों हो रहा है, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ही होना था। तो इसका जवाब शफकत अमानत अली खान साहब की आवाज में सुन लेते हैं।
चलता रहा जानना धीरे धीरे यूं चलते चलते ये मैं कहां आ गया देखेंगे मेरा रास्ता गम भी कहीं ये सोचा न था मैंने इन रास्तों से मजाक में रास्ता तो पूछा न था कुछ दिन
Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. बहुत ही अच्छा सवाल है उन्होंने कहा जी जिससे दिल को खुशी होती है और दिल को सुकून मिलता है वो आप नहीं कर सकते क्योंकि आप केज में बंद हैं तो स्ट्रेस कैसे दूर होगा ये सवाल इनका नाइस ऑफ यू फॉर द क्वेश्चन सवाल जो है देखें देर आर टू रियलिटीज इन दिस वर्ल्ड दो हकीकतें हैं इस दुनिया की जिनको कोई जुटला नहीं सकता एक फर्क सिर्फ यह है कि एक टेंजिबल है उसको आप छू सकते हैं और एक इनटेंजिबल है उसको आप छू नहीं सकते जो टेंजिबल रियलिटी है दैट इज फिजिकल रियलिटी जिस्म की रियलिटी और जो इनटेंजिबल रियलिटी है वो है स्पिरिचुअल रियलिटी और वो है जी रूह जो इनटेंजिबल है वो रूह की रियलिटी है रूह के बगैर जिस्म तो कोई चीज नहीं है आपने देखा है अमरे रब्बी क्या है सांस निकल जाता है तो जिस्म क्या करते हैं आप दफना देते हैं उसको तो हकीकत तो है लेकिन टच नहीं कर सकते आप उसको जैसे कंप्यूटर जो है आपके सामने लैपटॉप वगैरह जो भी है ये टेंजिबल है इसको आप छू सकते हैं लेकिन इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसको नहीं छू सकते आप लेकिन उस सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर तो ठीक रहा है कोई फायदा नहीं इसका ठीक है तो बिल्कुल इसी तरह अगर जिस्म कैद है तो सोच तो कैद नहीं है आप सोच में अपनी चीजें बना सकते हैं इंसान को रब ने हर रास्ता दिया है ख्वाब का रास्ता दिया है एक अल्टरनेट रियलिटी जो है उसका जो है वो रास्ता दिया है हमारी असल में जिस्म नहीं कैद हमारी सोचें कैद हैं जब तक हमारी सोचें नहीं रिहा होती जिस्म के रिहा होने से क्या होगा वो नेल्सन मंडेला वो रूबन आइलैंड में 21 या 22 साल तक उसको उन्होंने बंद रखा लेकिन उसकी रूह और उसकी सोच जो थी वो आजाद थी वो जैसे ही बाहर निकला वो मुल्क का प्रेसिडेंट बना हुआ पूरी दुनिया आज नेल्सन मंडेला को इस सदी के हीरोज में उसका नाम लेती है और लेती रहेगी और वो जिंदा रहेगा उन 400-500 लोगों में जिनको दुनिया याद रखेगी उनमें उनका नाम भी है और रहेगा सो 22 साल एक छोटी सी कमरे के अंदर रहकर भी उनकी सोच और वो जो इनविक्टस थी आई एम द कैप्टन ऑफ माय शिप वो जो उनका था सो वो जिंदा रहा तो इसी तरह हम लोग सिर्फ हम लोग लिमिटेड हैं अपनी सोच के हाथों हमें लगता है कि हमें बंद कर दिया गया है हम और कुछ नहीं कर सकते हमें रोना पिटना शुरू कर देते हैं हम परेशानी लेना शुरू कर देते हैं हम लोग हम वही लोग हैं जो इस बात को भी अजीब एक बात है मैं अपनी जिंदगी में बड़े लोगों से मिला हूं और बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी मैंने कहानियां सुनी हैं लेकिन और लोगों को किसी से कोई पसंद भी आ जाए ना तो उनको अफरा तफरी मच जाती है मैं लोगों को हाइपर वेंटिलेशन शुरू कर देते हैं उन्हें किसी से मोहब्बत हो जाए या उन्हें कोई अच्छा लगने लग जाए या ऐसे ही हार्मोनल सी इंक्लिनेशन भी अगर है उनको इन्फैचुएशन भी किसी से है तो मौत पड़ जाती है लोगों को इसमें इतनी परेशानी की क्या बात शुक्र नहीं करते कि दुनिया में एक इंसान है जो आपको चाहे अच्छा लगा किसी की बात सुन के आपको बुरा नहीं लगेगा या उनसे वो बेइज्जती भी आपकी हो जाएगी तो आपको बुरा नहीं लगेगा उनसे वरना तो जरा सी बात में हमें तकलीफ और हम तो मुकाबले और लड़ाई पे उतर आते हैं ईगो में तो शुक्र नहीं करते तो और चाहते क्या है मोहब्बत में आदमी किसी को क्या दे सकता है ये भी एक अजीब सा ढकोसला है लोग समझते हैं कि महबूब को काबू कर लें तावीज़ गंडों से या उनसे ब्याह कर लें या और तरीके से कर लें मोहब्बत फिर भी काबू नहीं आ सकती आपके हाथ जिस्म आ गया रूह निकल गई है उसकी क्योंकि आपके हाथ जब भी कोई चीज़ आएगी आप इंसान बना इस उस मट्टी से है कि उसको फिर आगे जाना या उसको पहले उस पर पूरा कंट्रोल करना होगा उसको अपने काबू में करना होगा और उसके बाद फिर अगले होराइजन्स देखने होंगे और इस बात को समझें रब आज तक किसी ने नहीं देखा ठीक है ना कौन है कैसा है क्या है किताबें आ गई हैं और बड़े तरीके से चीज़ें लोगों ने कर ली हैं, अपनी सी अपने तई सब ने कोशिशें कर ली हैं, वो सामने क्यों नहीं है और क्यों नहीं आता? उसने हमको बनाया है, वो समझता है, आप खुद सोचें क्यों नहीं आता, आपको जवाब मिल सकता है। इंसान की सृष्ट में है, जो चीज़ उसकी नहीं है उसके पीछे जस्तजू करते रहना, उसको खोजते रहना, कोशिशें करते रहना, जब मिल जाए, चाहे वो गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, इंसान हो, शोहरत हो, कोई भी चीज़ हो, उसके दिल से उतर जाती है वो चीज़ और उसको कुछ और चाहिए होता है। लेकिन ये वायद ऐसी चीज़ है जो ना आपको मिलनी है ना आपके दिल से उतरनी है। इसके ऊपर लोगों ने शायरियाँ भी कर ली हैं, लोगों ने मोहब्बतें भी कर ली हैं, रब से लौएं भी लगा ली हैं, जंगलों में भी निकल गए हैं, हज़ारों सालों से आदमी पिट मरा है, लेकिन जो अकले कुल है, जिसको सब पता है, उसने बिल्कुल ठीक रखा है हमको, इससे बेहतर नहीं रखा जा सकता इंसान को। उसके ऑर्बिट में, उसकी लिमिटेड टाइम एनर्जी और लिमिटेड स्पेस के अंदर उसको यहीं पे रखना ही उसकी जगह है। इससे वो बाहर निकलेगा तो परेशान, तकलीफ, मसाइल और बहुत से पागल हो जाएगा, क्योंकि वो बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन है और उसको ह्यूमन माइंड कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएगा। जो मर्जी सवालात घड़ लें, प्रोबेबिलिटी थेरियां हम बना लें, बिग बैंग थेरियां हम निकाल लें, हम यू नो 1 बिलियन गैलेक्सीज डिस्कवर कर लें, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, अगर जिंदगी दोबारा रही, दोबारा कभी आंख खुलने का मौका मिला और हम वहीं पे हुए, तो भी देख लीजिएगा, तभी कुछ होगा, अब कुछ नहीं हो सकता। इस ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर है रब की ज़ात, उसको कोई नहीं कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें और भी हैं 4-5 जिनको हम कंट्रोल, हम लोग तो अपनी स्किन के कलर को नहीं कंट्रोल कर पाते जी, अपनी प्री जेनेटिक डिस्पोजिशन में आई हुई चीज़ों को हम नहीं कंट्रोल कर पाते। हमारे तो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, सिर्फ हमें सोचने समझने का, हमें हमारा समझदानी बंद है। आज का जो शो था ये एक एब्स्ट्रैक्ट लगता होगा आपको, क्योंकि इसमें हमने फिलॉसफी ऑफ लाइफ की बात की, इसमें हम सेल्फ इमेज की बात की, उसमें हमने शॉर्ट एनालिसिस की बात की, इसमें हमने कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की बात की। अब अगला जो पार्ट 2 होगा ना इस शो का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, उसमें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे लोग हमें स्ट्रेस देते हैं, जिन लोगों से हमारा रिश्ता है वो हमें स्ट्रेस देते हैं, जहां हम काम करते हैं वहां पे हमें स्ट्रेस होता है, ठीक है, कुछ लोग जो हमें नहीं समझ पाते हमें उसका स्ट्रेस होता है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से हमारे स्ट्रेसेस हैं, कुछ लोगों की सोच और समझ की वजह से हमारे स्ट्रेसेस हैं, कुछ हमारी अपने हम अपने दुश्मन हैं, वो हमारे स्ट्रेसेस हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आइए ज़रा ज़्यादा और ज़्यादा, ये अभी हमने सिर्फ ऊपर से खाक हटाई है, ये फिलॉसफीज़ और एस्पेक्ट्स जो है ना, इसको अभी हमने बेसिक चीज़ें कर ली हैं बात, लेकिन पार्ट 2 में हम बात करेंगे वो चीज़ें जो जैसे एज इट इज़ जो होती हैं हमारे साथ, उनका जवाब क्या है, उसके बारे में डिवाइन विजडम क्या कहती है, उसके बारे में इंसान की विजडम क्या कहती है, ठीक है। अगर कोई आदमी सख्ती करता है या बदतमीज़ या बदतहजीब है, उसका जो स्ट्रेस आप पे हो जाता है उसका कंट्रोल कैसे करना है या कैसे किया जा सकता है, एक बात याद रखिएगा। और आज की छोटी सी बात है, हम में से जो अभी लोग इफ दे आर मूविंग इन द सर्कल, जैसे कुत्ता अपनी दुम को पकड़ने की कोशिश करता है और कभी उसके हाथ नहीं आ रही होती या उसके मुंह नहीं आ रही होती कहना चाहिए, लेकिन वो गोल गोल सिर्फ घूमता रहता है, जैसे कोल्लू का बैल जो है, जो तेल निकालने के लिए सालों घूमता रहता है लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाता, गोल चक्कर में काट रहा है उसको। इसी तरह अगर हम लोग अपने मसाइल, अपने प्रॉब्लम्स को का कोई सलूशन नहीं कर पाते, सिर्फ कहकर समझते हैं क्विक फिक्स हो गया, तो मसले वहीं रहेंगे हमेशा और स्ट्रेस हमेशा एट द बैक ऑफ द माइंड रहेगा। प्रॉब्लम्स के, दुनिया में हर प्रॉब्लम का, अगर वो कंट्रोलेबल फैक्टर्स से रिलेटेड है तो उसका सोल्यूशन होता है, वो आप ट्राई करते हैं, नहीं होता तो आप उसका अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, एक और सोल्यूशन, कोई और रास्ता निकालते हैं, आप रास्ते ढूंढते रहते हैं। अगर लोगों ने रास्ते निकालने बंद कर दिए होते तो इंसान चांद पर या मार्स पर कभी नहीं पहुँचता। अगर लोगों ने साइकोलॉजी को समझे बगैर, इंसान को इंसान से कनेक्ट किए बगैर और बाकी चीज़ों को आइसोलेशन में ये सारे काम किए होते तो इंसान के बारे में इतना इल्म कभी भी नहीं आता। ये जो जितनी भी आप नई चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख रहे हैं, जो नैनो कंप्यूटर्स की बातें हो रही हैं, ये आंख के अंदर लगे हुए कंप्यूटर्स की बातें हो रही हैं, ये सारा कुछ जो हो रहा है क़यामत की एक निशानियों में, अजीब सी निशानी बताएं आपको, और वो बड़ी सिंपल है। जब पहली दफ़ा मैंने सुनी बड़ा हंसा, फिर जब मैंने वो ज़िंदगी में चीज़ देखी तो मुझे बिल्कुल समझ आ गई बात की। कहा गया कि इंसान अपने हाथ की हथेली में दुनिया देख सकेगा, आदमी को तो हंसी आती है ना, ये कैसे हो सकता है यार, हाथ की हथेली में दुनिया कैसे नजर आती है, आईफोन या एंड्रॉयड पकड़ के देखे नजर आती है कि नहीं आती। सोचने की बातें हैं, सिर्फ वक्त के साथ साथ साइंस फिगर आउट करेगी, हम फिगर आउट करेंगे रीजंस एंड लॉजिक से, जो भी कहानी है बिल्कुल इसी तरह। और ये बड़ा अच्छा एक और एग्जांपल है, कहा गया कि एक जमाने में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक इंसान में जिसके पास मेरा एक खास इल्म था, मेरे एक खास इल्म की जांच थी, उस आदमी ने पलक झपकते में इन अ स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड, बल्कीस मेरा ख्याल यही नाम था उनका, उनका जो तख्त था उसको चश्मो जन में जो है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में ला खड़ा किया था। तो लोग मुस्कुराते भी थे, हंसते भी थे, यार ये कैसे हो सकता है, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। अब स्काइप पे एक बटन दबाते हैं आप और पूरे की पूरी चीज़ जो है वो वहाँ पे हाजिर हो जाती है। किसी ने ये तो नहीं कहा था ना कि उन्होंने हाथ लगाया उस इमेज को, क्या है ये, एक खास किस्म की साइंस है ना, एक इल्म है जिसके बारे में बताया गया था, वो आज भी है, अब मान लेते हैं हम, तब नहीं मानते थे। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता फिगर आउट हो रही हैं चीज़ें, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, ये बड़ा मज़े का काम है, इसको इन्जॉय करने की ज़रूरत है, इसमें इस पर अशाशकार उठने की चीज़ है और इसको इन्जॉय करने की बात है, क्या बात है, वाह, बजाय इसके कि हम इसकी मुसीबत बना लें और एक दूसरे के खुदाओं को मारने और तकलीफें और परेशानियां करने में शुरू हो जाएं और कहेंगे ये वो बेहतर है और वो अच्छा है और वो नहीं अच्छा और ये क्या और वो क्या, लोग हमारे आइडियाज़ को कन्फर्म कर लें, ऐसे थोड़ी होता है। एक ज़माने में, लेकिन ये भी सच है, खान जी भी कहते थे, 100 साल पुरानी बात है, और उनके बुज़ुर्ग भी कहते थे, उनकी 110 साल की उम्र थी, 116 साल, वो भी कहते थे कि स्ट्रेस ऐसे नहीं हुआ करते थे, वक्त बहुत बदल गया, इसके चैलेंजेस बदल गए हैं इसके, इसीलिए कहा गया था अपने बच्चों को अपने ज़माने का इल्म मत दो, वो तुम्हारे ज़माने के लिए पैदा नहीं हुए। लेकिन एक ज़माने में फिर भी स्ट्रेस, लाइफ सिंपल थी, नीड्स पे गुजारा किया करते थे लोग, और फिर जैसे जैसे वांट्स की तरफ जाने लगे, इंसान भी ख़त्म होने लगे और सल्तनतें भी, बड़े से बड़ी जो एम्पायर्स थी वो भी क्रम्बल डाउन होना शुरू होगी। हम खुद दुश्मन हैं अपने, इसको फिगर आउट करने की कोशिश करते रहेंगे, अगर हम अपने दोस्त हैं तो कैसे, पार्ट टू में करेंगे उसके बारे में बात। एक छोटी सी नज्म है और फिर सबसे आखिरी बात, साथ मिलकर चलेंगे तो स्ट्रेस कम होंगे, क्योंकि एक आदमी अकेला काम बहुत मुश्किल है चलना, एक अकेला और 2 11, किसी ना किसी को साथ चलना है या किसी ना किसी ने साथ ज़रूर देना है हम लोगों के, तो ज़िंदगी आसान होगी। इस सोच के साथ आज की ये छोटी सी नज़्म और एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक, उम्मीद करता हूँ कि आज हमने कुछ ना कुछ ज़रूर पाया होगा इस शो से, दुआ में याद रखिएगा ज़िंदगी, तो फिर मिलेंगे। सबसे आखिरी सबसे अहम बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। हम लोग न थे ऐसे हैं जैसे नजर आते, हम लोग न थे ऐसे हैं जैसे नजर आते, ऐ वक्त गवाही दे हम लोग न थे ऐसे, ये शहर न था ऐसा, ये रोग न थे ऐसे, दीवार न थे रिश्ते, जिंदा न थी बस्ती, खिलजान न थी हस्ती, ये शहर न था ऐसा, ये रोग न थे ऐसे, दीवार न थे रिश्ते, दीवार न थे रिश्ते, जिंदगी न थी बस्ती, खिलजान न थी हस्ती, यू मौत न थी सस्ती, ये आज जो सूरत है, हालात न थे ऐसे, तफरीक न थी ऐसी, संजोग न थे ऐसे, ऐ वक्त गवाही दे हम लोग न थे ऐसे।
चले चले थे साथ साथ, रुके रुके थे साथ साथ, कितना हसी था अपना सफर, सारे जहां की खुशियां के साथ बिछड़ गए हम, दुख की है बात मेरी जिंदगी मेरे साथ नहीं, चले चले थे साथ साथ, रुके रुके थे साथ साथ, कैसे ना करता उसको मैं प्यार, उसकी हंसी में सुख थे हंसा, बिछड़ गए हम दुख की है बात मेरी जिंदगी मेरे साथ नहीं, क्या सोचा हुआ क्या